ओम शांति। आज के वैलिडिटी सेशन को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर हमारे जो गेस्ट हैं, रेस्पेक्टेड ब्रिगेडियर डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप कृपया मंच पर पधारें। मिस्टर बलवीर सिंह फ्रॉम यमुनानगर, आप भी कृपया मंच पर आएं। बहुत बहुत स्वागत भाई जी। मिस्टर बलवान सिंह जी फ्रॉम दिल्ली, कृपया मंच पे आएं। मिस अपर्णा कामली, इंटरनेशनल क्रिकेट कोच फ्रॉम मुंबई, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी आदरणीय वाइस चेयर पर्सन स्पोर्ट्स विंग बीके शशि दीदी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बीके मोहन जी, शांतिवन कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग, कृपया मंच पे आए। बीके डॉक्टर जगबीर सिंह, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रेस्पेक्टेड बीके डॉक्टर जगबीर सिंह। हमारे चेयरपर्सन बीके डॉक्टर बसवराज राजऋषि जी, आप भी हम सबके बीच आएंगे। रेस्पेक्टेड बीके डॉक्टर बसवराज राजऋषि जी। हमारे पंजाब जोन के कोऑर्डिनेटर करनाल से बीके मेहरचंद भाई जी, आपसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी राजयोगा शिक्षिका बीके तारा बहन फ्रॉम चिलोड़ा, आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तारा बहन जी, कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले हम सब ईश्वरीय स्मृति में बैठेंगे 2 मिनट।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले।
ज्ञान सरोवर के सुंदर प्रांगण में, स्पोर्ट्स विंग में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन स्पोर्ट्स। सर्वप्रथम हम मंचासीन सभी अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप सबका प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण स्वागत है। मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि बुकेट्स के द्वारा हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर विक्रम सिंह जी, आदरणीय बसवराज राजऋषि जी, चेयरपर्सन स्पोर्ट्स विंग, रेस्पेक्टेड बलवीर सिंह जी, अपर्णा कामली जी, हमारी वाइस चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड बलवान सिंह जी, आदरणीय शशि दीदी जी का स्वागत है, भ्राता जगबीर सिंह जी का भी स्वागत। हम तालियां बजाते रहे, बहुत महान हस्तियां हम सबके बीच बैठे हुए हैं, बीके तारा जी, बीके महरचंद भाई। सभी का भी मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच सूरत से ग्रेसी एंड ग्रुप, जो कि एक वेलकम डांस हम सबके प्रति, हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगी, ग्रेसी एंड ग्रुप फ्रॉम सूरत। बहुत ही सुंदर बच्चों ने हम सबके सामने अपनी प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच हमारी आदरणीय शशि दीदी जी, जिन्होंने बचपन काल से ही ईश्वरीय सेवाओं में स्वयं को समर्पित किया, आप इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पांडव भवन में एज ए मैनेजर सारा कुशल संचालन करते हैं, आप हमारी स्पोर्ट्स विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, और ये जो चार दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार हम सबके लिए रखा गया है आप ही के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशानुसार चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के सेशन में की नोट स्पीच हम सबके समक्ष रखेंगे आदरणीय शशि दीदी जी।
ओम शांति। ज्ञान सरोवर के सुंदर कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स विंग द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस जिसका विषय रहा मिरेकल्स ऑफ राजयोगा फॉर बूस्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मैं समझती हूँ कि पिछले 3 दिन से आपने कई मिरेकल्स देखे होंगे स्वयं के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए ना केवल देखे होंगे परंतु अनुभव भी किया होगा, क्योंकि राजयोग एक ऐसा मीडियम है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। हर मानव के अंदर ऐसी छिपी हुई शक्तियां हैं जिसे ना तो हम जानते हैं ना वो व्यक्ति जानता है। जब भी वो पुरुषार्थ करता है, जब कभी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस में वो व्यक्ति अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को ऐसे एक्सप्लोर करता है जैसे कि एक बहुत सुंदर फुआरा फूट गया हो। तो इस 3 दिन के अंदर आपने अनुभव किया होगा कि हमारे जीवन के अंदर आंतरिक कितनी न शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अपने जीवन में प्रयोग करते हुए हम जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए खुशी खुशी उस कार्य को कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जितना भी हम खेल करते जाएंगे, जितना अपने खेल कूद के अंदर या अपने स्पोर्ट्स के अंदर हम करते जाएंगे उतना अनेक प्रकार के एक्सपीरियंसेस का खजाना हमारे पास प्राप्त होता जाता है। तो आज तो कहते हैं कि वैलिडिक्ट्री सेशन है, मैं कहूंगी वैलिडिक्ट्री सेशन नहीं है, ये समापन सेशन नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए एक नया जीवन, एक नई दिशा, एक नए युग का शुभ आरंभ है। और इस सेशन का विषय है एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन स्पोर्ट्स। हम ये भी जानते हैं कि स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर हमारे सामने कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कई तरह की हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसी प्रकार के यदि हम स्पोर्ट्स के अंदर अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कोचिस को खुश रखना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लेना चाहते हैं, गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, तो हमें खुद स्वयं के लिए ही कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जो हमें जीवन के अंदर कार्य करते हुए कॉन्टेंटेड रहें, सेटिस्फाई रहें और दूसरे भी देखने वाले उससे सेटिस्फाई रहें। पहला एथिक हमारा है कि हमें अपने जीवन के अंदर कभी भी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को नहीं क्रिएट करना कि मैं कैसे करूंगा, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों होगा, ये क्यों, क्या, कैसे का ये जाल हमें अपने जीवन के अंदर कभी नहीं क्रिएट करना है। इसके विपरीत हमें क्या करना है, हम सब कुछ कर सकते हैं और मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं उसको करने का अभ्यास करूँ। मुझे याद आता है इस विद्यालय के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा जब भी कोई कार्य हम सबसे कराते थे तो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और कोई बुजुर्ग थे और जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कोई कार्य किया ही नहीं था, तो बाबा जब उनको कहते थे कि बच्चे आपको ये कार्य करना है तो पिताश्री जी हमेशा कहा करते थे, कभी भी ये नहीं कहना कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट द डिक्शनरी ऑफ यू चिल्ड्रन। हमेशा कहते थे कि आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, आप ये वर्ड कहाँ से लाए हो। जब स्कूल में पढ़ते हैं तो बताते हैं कि ये शब्द तो डिक्शनरी में है ही नहीं। तो पिताश्री जी ने कहा कि हम कर सकते हैं, परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है, तभी तो आप इस संसार के अंदर इतने बड़े से बड़े कार्य कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर पहला एथिक्स हमें अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ क्रिएटेड हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरों को देख करके अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन जो है कभी कभी क्या करता है, हमारे अंदर जोश डाल देता, और कंपैरिजन कभी कभी हमें धरातल की ओर ऐसे गटर के अंदर डाल देता है जहां से हम उठ नहीं सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं। कंपैरिजन में क्या होता है, इस व्यक्ति के पास बहुत फैसिलिटीज हैं, ये पहलवान है, इसका खाना बहुत अच्छा है, इनको बहुत फैसिलिटीज हैं। जैसे हम अपने देश के अंदर दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, अमेरिका में जाओ बहुत अच्छा खाना मिलेगा, खिलाड़ियों को ये खिलाते, हमारा तो कोई भी ध्यान नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं, बहुत समय पहले मैं इक्वाडोर थी, इक्वाडोर कंट्री में थी, वहां पर जो लोग हैं देखने में अच्छे हैं लेकिन देश की स्थिति अभी ऐसी है, गरीब हैं, खिलाड़ी थे तो उनको देख के लगता था कैसे खेलेंगे। तो लेकिन हमने देखा कि वो उनके अंदर इतना हिम्मत था, इतना उल्लास था कि वो खेलने में हमेशा आगे जाते हैं। आप केनिया की ओर चले जाओ, केनिया के खिलाड़ी जब जब हम यहाँ मैराथन रेस रखते हैं, केनिया के खिलाड़ियों की धावकों की एक विशेषता है, हर इंटरनेशनल मैराथन में केनिया के ही लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और ये केनिया के ही धावक जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज ले जाते हैं। क्योंकि माउंट आबू के अंदर हमने कई हर साल दो मैराथन रेस रखी जाती हैं और वो भी इंटरनेशनल होती हैं, एक अपने विद्यालय की ओर से दादी प्रकाश मणि डे के निमित्त रखते हैं जिसमें हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से प्लेयर काफी आते हैं। पिछले साल हमारे पास अफ्रीकन कंट्री से, स्विट्जरलैंड से, अन्य फ्रांस से, कई देशों से आए थे। तो हमने देखा जो केनिया के लोग इतने पतले पतले और वो दौड़ने में इतने फास्ट, और वहाँ की आप देखो आज की स्थिति क्या है, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका त्याग, उनकी प्रैक्टिस उनको आगे बढ़ा देती है। तो इसी प्रकार से हम आपको बताएं कि हम कभी भी अपने आप को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करें। अगर कंपेयर करना है कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वो कर सकता मैं नहीं कर सकता, ये कंपैरिजन हमको नीचे की ओर ले जाता है। और तीसरी बात है कि हमें ना तो अपने बारे कंप्लेंट करनी है, ना टीम के बारे में, ना कोचिस के बारे में। हमें समझ सकती हूँ कि कोचिस से कई बार कई बातें हमें सहन करनी पड़ती है, हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमको वो नहीं समझ पाते, हम उनको नहीं समझ पाते हैं। कंप्लेन की बजाय आप अंडरस्टैंड करें, वॉट इज द रीजन, क्या कारण है, क्यों नहीं हमारे मेल मिलाप हो रहा है, क्यों नहीं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें पिताश्री जी ने यही सिखाया था कि कंप्लेंट की बजाय चेक योरसेल्फ, पहले अपने आप को चेक करो, दूसरा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, तीसरा उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। वो समय फिर ऐसा आता है कि सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना हो जाती है। नहीं तो अगर हम मन में कुछ भी बुरा विचार रखते हैं तो दूसरा भी उसके प्रति वैसा ही विचार रखता है। हम छोटे थे कई प्रकार की कहानियां सुनते थे, लेकिन अब हम देखते हैं फील्ड के अंदर कि यूं हमें हमारे माता पिता हमारे दादियां हमें ये क्यों सुनाती थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि एक बार की कहानी है कि दो दोस्त किसी स्थान पर गए कमाई करने के लिए, और जब कमाई करके आ रहे थे तो रास्ते में बहुत थके हुए थे, भोजन नहीं था, तो दोनों ने कहा, एक ने कहा मैं विश्राम करता हूँ और इस कमाए हुए धन को मैं संभालता हूँ, और दूसरे को कहा कि तुम भोजन लेकर के आओ। जब वो भोजन लेने के लिए गया तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस भोजन के अंदर जहर मिला दूं, वो खाएगा मर जाएगा, सारा धन मुझे मिल जाएगा। तो उसने कहा मेरे खाने का, दूसरे ने वहीं बैठे बैठे विचार किया मेरे लिए भोजन तो आ ही जाएगा, मैं भोजन खा ही लूंगा, और ये धन मैं क्यों ना पूरा अपने पास रखूं, जब वो आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो दोनों, एक के अंदर विचार आया तो दूसरे के अंदर भी वैसा विचार आया, तो दोनों ने क्या किया, वैसा ही कर्म किया, दोनों अपनी लाइफ से हाथ धो चुके, ना उसे धन मिला ना उसे मिला। तो ये तो कहानी हम बचपन में सुनते थे, ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारे पूर्वजों ने सुनाई, लेकिन वो कहानी नहीं है, वो आज के जीवन के अंदर प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स हमारी लाइफ के अंदर होते रहते हैं। तो इसके लिए राजयोग के माध्यम से हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, ना कभी अपने लिए बुरा सोचो, ना अपने फ्रेंड्स के लिए बुरा सोचो, ना दूसरे के लिए बुरा विचार करो, सदा सबके लिए शुभ विचार करो, वो शुभ विचार आपको ताकत देगा, आपके जीवन के अंदर आपके सामने वातावरण को श्रेष्ठ करेगा, और साथ साथ आपके अंदर शक्ति का स्रोत उत्पन्न हो जाएगा। उन शुद्ध विचारों से हमें जीवन के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसके बाद हमें अपने जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को कैसे एडॉप्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स मन को प्योर करना, मन को स्थिर करना, मन को परमात्मा में लगाना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स मन को श्रेष्ठ भोजन देना। आज हम देखते हैं अपने जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि इनको न्यूट्रस भोजन दिया जाए, या वैसे आम दुनिया के अंदर भी देखो, आम व्यक्ति को देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके हेल्थ चेकअप करते हैं, इस विटामिन की कमी है, इस विटामिन की कमी है, न्यूट्रस भोजन की कमी है, वो कई प्रकार के विटामिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि भोजन शरीर को हेल्दी भोजन चाहिए, न्यूट्रस भोजन चाहिए, सब प्रकार के विटामिन चाहिए। तो इसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी मीन्स ही आत्मा को मन को एक हेल्दी भोजन। हेल्दी भोजन मीन्स शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, शुभ संकल्प। तो इन शुभ संकल्पों को हमें प्रातःकाल उठते ही तैयार होकर के, जब हम अपने प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, मैं तो जानती हूँ खिलाड़ियों को तो जल्दी जल्दी उठाया जाता है, जल्दी जल्दी तैयार होकर के वो मैदान में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, और सुबह का टाइम इतना बेस्ट टाइम है आप सबके लिए। उस समय एक शुभ विचार कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर सकती हूँ, और वो स्थान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करके जाना है। और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ भारत के अंदर नहीं होगा गरीब हो अमीर हो, जो परमात्मा को याद ना करता, सब करते हैं लेकिन कैसे याद करते हैं? दुखी मन से, अशांत मन से, या इच्छा को पूर्ण करने से? और याद भी कैसे करते हैं? मंदिर के आगे जाएंगे, माथा टेकेंगे, हे भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं आज इतना मेरा काम हो गया, मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा। अरे परमात्मा से बार्गेनिंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं? अगर मैं फर्स्ट आ गया या मेरा ये काम हो गया, मैं ये कार्य कर दूंगा। फर्स्ट आ गए, वो कार्य हो गया, कब वो कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, वो कभी याद नहीं आता। तो आजकल जो मनुष्य भगवान को याद करते हैं, वो डर के मारे, इतना डर करके चलो भगवान को याद कर लेते हैं, या तो डर से करते हैं, या भिखारी की भावना से करते हैं, या ऐसे करते हैं जैसे कि गरीब को चलते हुए नमस्कार कर दिया, गरीब को देखते हुए ऐसे मुंह दिखा करके मुंह मोड़ लेते हैं। तो आज हमारी कंडीशन वो हो गई है कि परमात्मा से प्यार ही नहीं रहा। परमात्मा मेरा पिता है, जिसके द्वारा मुझे सब प्राप्तियां होती हैं। परमात्मा ही हमको महान बनाता है, परमात्मा ने ही हमें ये शक्तियां दी हैं ये खेल करने के लिए। जिसने दिया, जिसने सिखाया, उसको थैंक्स देने की बजाय उनसे हम बार्गेनिंग करते हैं। तो ये राजयोग हमें सिखाता है कि बार्गेनिंग नहीं करना है, ना अपने आप से, ना परमात्मा से, ना किसी मनुष्य से। परमात्मा को जब भी याद करो, कम से कम 5 मिनट तो टाइम निकालो, प्यार से याद करो परमात्मा की। हम गॉड लविंग चिल्ड्रन बने, गॉड फियरिंग चिल्ड्रन नहीं। आज तो ऐसे हो गया है कि परमात्मा के नाम से डरते हैं, कोई डरता है, कोई नहीं डरता है, कोई कहता है कि परमात्मा क्या चीज है। तो ये हमें ध्यान देना है कि परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हम उनके संतान, शक्तियों से संपन्न है, उन शक्तियां हमारा खजाना है। इन शक्तियों को श्रेष्ठ कार्य के लिए, अपने खेल के कार्य में, अपने खेल की परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और एक एग्जाम्पल के लिए, मुझे इन शक्तियों को प्यार से, सुख से, खुले दिल से, शांत मन से इसका प्रयोग करना है। जब उसका प्रयोग करते हैं तो जब खिलाड़ी खेलता है तो देखने वालों के मन के अंदर भी एक बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है। हम देखते हैं जब क्रिकेट मैच होता है तो खेलने वाले तो खेल रहे हैं, देखने वालों की हालत क्या होती है, हार्ट बीट कर रहा है, धक 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 चलता ही रहता है, ऐसा चलता है कि एक एक गेंद के ऊपर उनकी हालत देखने की होती है। अगर हम अच्छे ढंग से खेलते हैं, खुशनुमा चेहरे से खेलते हैं, तो देखने वाले के हार्ट बीट तो चलेगा ही, लेकिन बड़ा रिलैक्स होगा, बड़ा शांत होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, बड़ा प्लीजिंग मूड होगा। नहीं तो कभी कभी उनका मूड ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए हमें ऐसा वातावरण को क्रिएट करने के लिए सेल्फ को ऐसा ही बनाना है। फिर इसके साथ साथ खिलाड़ियों के पास तो ऐसा रास्ता है कि वो दिन में 5-6 बार अपने मन को फिर से मोटिवेट कर सकते हैं। एक तो प्रातःकाल उठते ही 1 मिनट 2 मिनट कम से कम 5 मिनट तक साइलेंस में बैठे। जैसे साइलेंस में बैठते हैं तो मन को एक शक्ति के स्रोत का अनुभव होता है। फिर खेलते खेलते आपको जब रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलता है, दिन के समय 10 बजे आपका सारा पूरा हो जाता है, उस समय 10 बजे या 9 बजे 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे। फिर दोपहर के टाइम पर जैसे कभी कोई व्यक्ति थका होता है ना, शरीर को एक्टिव करने के लिए कभी चाय पियेंगे, कभी बाहर जाके टहलेंगे या किससे बात करेंगे। तो दिन के टाइम पर हर रोज हमें क्या करना है, प्रातःकाल एक न एक शुभ संकल्प क्रिएट करना है। उस शुभ संकल्प को या शुभ थॉट को दिन के समय एक बार फिर से उसको याद करें, रिवाइज करें। और शाम के समय भी हम ध्यान दें कि आज जो मैंने किया है, मैंने अच्छा किया है और अच्छा करना है, और अपने साथियों के प्रति भी हम शुभ वाइब्रेशन के प्रकंपन फैलाए, और रात को सोने से पहले परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दे कि आपने मुझे ये सिखाया, शक्ति दी, और मैंने अपनी यथाशक्ति अनुसार अच्छा किया, कल और अच्छा करें, और अपने कोचेस को, कैप्टन को और टीम के प्लेयर्स को भी एक थैंक्स दे कि ये सब मेरे साथ ही कितने अच्छे हैं, इनके कारण ही हम अपनी टीम में खेल सके। कभी कभी कोई कंपटीटर बहुत तेज होता है, उसको भी थैंक्स दे कि इसकी कंपटीशन बहुत तेज है, इसके कारण मेरे अंदर शक्ति आई है, उसको भी थैंक्स दे, और उसको थैंक्स देते हुए परमात्मा को भी थैंक्स देते हुए खुद को भी यही कि मैं भी और अच्छा करूं, खुद को भी बहुत सुंदर विचार देते हुए रात्रि विश्राम करें, और प्रातःकाल उठते ही फिर से परमात्मा से यही हम शुभकामना करें कि जो आपने सिखाया आप हमारे पिता हैं, जो शक्ति आपने हमें दी है इस शक्ति को मैं सदा श्रेष्ठ और अच्छे कार्य में लगाऊंगा, अपना, समाज का, परिवार का, देश का नाम रोशन करूंगा, देश के लिए मेडल लेने हैं और लेते ही रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी आज नहीं कल अपने नए श्रेष्ठ जीवन को चलाने के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं नए श्रेष्ठ जीवन में आप सदा आगे बढ़ते रहें। आप सबको नए जीवन के लिए, नए कार्य के लिए, जीवन के अंदर सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारक है, आगे बढ़ते रहें। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिशु विश्वविद्यालय के अंदर भारत के विभिन्न शहरों में हमारी विद्यालय की शाखाएं हैं, जब कभी आपको टाइम मिले वहां जाकर के राज्यों का अभ्यास करें। सेंटर के कनेक्शन में आने से काफी कुछ बातें सीखने को भी मिलती हैं, वे भी सीखते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहें। परमात्मा का वरदान आप सबके ऊपर है, परमात्मा के वरदानों की छत्र छाया में है। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। हमारे आदरणीय शशि दीदी जी ने हम सबको एक सुंदर संबोधन दिया कि कैसे स्पोर्ट्स लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमें चेक योर सेल्फ, खुद को चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी में रहना पड़ेगा, और एक सुंदर रिलेशनशिप हमारे स्पोर्ट्स में सक्सेस का एक आधार होता है। साथ साथ आपने बताया कि कैसे उस सर्वशक्तिवान से हम कनेक्शन जोड़ें, कुछ समय उसके लिए निकालें जो हमें सब कुछ देने वाला है। इस पर दो लाइन मुझे याद आई कि यात्रा में शिकायत है इसलिए तो रिजर्वेशन है, यात्रा में शिकायत है इसलिए तो रिजर्वेशन है, पर कुछ तो ख्याल करो उस यात्रा का जहां ना टिकट है ना स्टेशन है, ना टिकट है ना स्टेशन है। थैंक यू। मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ शशि दीदी का, और आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बीच भ्राता बलबीर सिंह जी, जो कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग के कोच और जजेज हैं, जो कि 18 साल से इंडियन रेलवे बॉडी बिल्डिंग के कोच भी हैं, जजेज भी हैं, और 2017 में आपने इंडियन रेलवे से रिटायरमेंट लिया है। आपने देश को नहीं बल्कि दुनिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी दिए हैं, और आज हम सबके बीच आए हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने ग्रीटिंग्स हम सबके समक्ष रखेंगे। रेस्पेक्टेड बलबीर सिंह जी।
ओम शांति। आदरणीय मंच पर सभी हमारे शशि बहन जी और सभी कोचिज आदरणीय, सभी प्लेयर्स, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं माउंट आबू में पहली बार आया हूं और मुझे आकर यहाँ पर इतना अच्छा लगा है कि मैं शायद इंडिया में कोई ही जगह शायद यही बची थी, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची होगी जहाँ पर मैं कंपटीशन के माध्यम से नहीं गया हूँगा, बल्कि कई जगह इंडिया की टीम लेकर विदेश में भी गया। लेकिन जो यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का वातावरण है, यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ मेरे को सीखने को मिला है, शायद आज तक कभी कहीं नहीं मिला। और मुझे आकर यहाँ पर इतनी खुशी हुई है कि मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर जगवीर सिंह जी का, जो कि हमारे नेशनल कंपटीशन में मेरिट में आए थे, और चंडीगढ़ में भी हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन कप था, वहाँ भी आए, तो उन्होंने यहाँ आने के लिए इनविटेशन दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और हमारे यमुनानगर से मिस्टर दीनानाथ जी हैं, जो कि बहुत ही सालों से उनका परिवार पूरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने प्रेरित किया ये आने के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेन हम यहाँ स्पोर्ट्स विंग में आए हैं, तो कल भी यही चर्चा चल रही थी कि स्पोर्ट्स में जो करप्शन है बहुत ज्यादा है, उसको हमने अपने लेवल पर कम करना है, उसको हटाने के बारे में सोचना है। अगर हम पूरा सोचेंगे तो कम से कम वो 50% कुछ कम होगी, क्योंकि ये जो करप्शन है, ये राजनीति स्पोर्ट्स में आई है, उसमें हम सभी कोचिज ने अगर मन में हम अपने से ही शुरू करें तो इसमें काफी सुधार आ सकता है। क्योंकि जैसे कल शाम को भी यहीं पे चर्चा चल रही थी कि जो जूनियर हैं बच्चे, उनके साथ सीनियर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, क्योंकि वो हमारी खुद की कमी भी है, हमें ऊपर से दबाव आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर तक हमारे ऑफिसर्स हैं, वो ऊपर तक ही करप्शन है, ऊपर से मिनिस्टरों का भी हमें कई बार अप्रोच आ जाती है, नहीं इसको पार्टिसिपेट कराओ। तो उसमें ऐसा है कि जो 16 साल का बच्चा है वो 20 साल के बच्चे से कैसे कंपेयर करेगा। तो मैंने कई बार देखा, हमारे तो बॉडी बिल्डिंग में जूनियर सब जूनियर तो होती नहीं, हम जूनियर करवाते हैं 21 साल से कम, तो कई बार उसमें 26 साल 28 साल के बच्चे भी आ जाते हैं। तो उसमें हमने तो यही रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि पहले बहुत बार देखा गया, कई ऐसे अपने आइडेंटिटी कार्ड जो हैं, जैसे आधार कार्ड ही है, आधार कार्ड ही ऐसे गलत ले आते हैं, क्योंकि वो उसके साथ वो कहते हैं सर हम तो राइट हैं, ये देखिए हमारा आईडी, तो आईडी आधार कार्ड को सबसे ऊपर मानते हैं, और वो भी गलत होता है। कई बच्चों को हम पर्सनली जानते होते हैं, तो मैंने उनको बोला है भाई 10 साल से तो मेरे को हो गया, तेरे को कंपटीशन में लड़ते आते देखा है, और लेकिन आप इसमें उम्र आपकी सारी 17-18 साल लिखी हुई है, तो क्या 5 साल से कंपटीशन कर रहे हो आप? तो वो तो नहीं इतना बोलता, पीछे हट जाएगा, उसका कोच कहेगा नहीं सर इसको इस बार करने दो, इस बार करने दो। तो हम इसमें हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम बिल्कुल रेत ना करें। और कुछ हमारे प्लेयर्स, जैसे मैंने कल भी कहा था कि स्टेराइड से दूर रहें, मेडिसिन से, तो आज कई मेरे को पूछ भी रहे थे कि सर ये मेडिसिन के बगैर, क्या स्टेराइड के बगैर ये एक्सरसाइज हो सकती है? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि हमारे प्रेमचंद को साहब सभी आप जानते होंगे, तो मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं 1988 में, वो मेरे खास फ्रेंड हैं, कुलीग हैं, हमारी ही फेडरेशन में जो रेकोनाइज मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट से रेकोनाइज है, उस फेडरेशन में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, उसमें आज भी वो प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो वो मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे रूममेट थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई, मैं कहा ब्रदर आप ये बताइए कि वास्तव में आपने कभी मेडिसिन नहीं ली? तो कहते मेरे को, कहते यार बलवीर तेरे को भी मेरे पे यकीन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, मतलब इतने हाई लेवल पे और इतने अच्छे आप मिस्टर यूनिवर्स हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो थोड़ा दिमाग में आता ही है कि विदाउट मेडिसिन आपने कैसे किया। तो उन्होंने मेरे को कहा, बलवीर औलाद से प्यारी तो कोई चीज नहीं होती, मेरा एक लड़का है, मेरे को उसकी कसम लगे अगर मैंने स्टेराइड का कभी एक टेबलेट भी ली हो, और इवन कि यहां तक कि मैंने सप्लीमेंट भी नहीं लिया, क्योंकि औलाद से प्यारी मेरे ख्याल से किसी को कोई चीज नहीं होती। आज भी सुबह यही बात चल रही थी, उषा बहन जी ने जो यहां हमें सुबह बताया, तो इतनी वो हार्ट को टच करी बातें, उन्होंने योग और योगा में जो डिफरेंस है वो बताया, और मेडिटेशन के बारे में समझाया, सभी ने, कल से मैं परसों से देख रहा हूं कि सभी जितने भी हमारे यहां पर आए टीचर समझाने के लिए, तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया। और खास तौर पे आज जो उषा बहन जी ने कहा, तो इतने मतलब दो घंटे उनको सुनते हुए पता ही नहीं चला कि दो घंटे कब बीत गए, तो इतनी चीज टच करी। तो मैं यही कह रहा था, मैं कह देखो इंडिया के हर कोने में हम घूमे हैं, तो यहां पर मैं नहीं आया तो कहते ना भी सभी स्टेशनों पर रुकते रुकते जंक्शन बाद में आता है, तो मेरे ख्याल से ये जंक्शन आ गया है, तो अब यहां पर स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हमें यहां को सीखने को मिली हैं वो शायद आज तक मेरे को, मैं भी सीनियर सिटीजन में आया हुआ हूं, तो आज तक मेरे को ऐसी बातें कहीं नहीं मिली और इजी ढंग से जो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये देखा है कि इनका समझाने का बोलने का इतना ढंग है, और ढंग क्या है कि मतलब बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं कि जो हार्ट को टच करती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स वर्क के, आप विदाउट मेडिसिन आप करें, नियम पूर्वक करें और पेशेंस रखें जरूर, क्योंकि कभी ये मत सोचें कि मैंने जीत के लिए लड़ना है। जीत की दिमाग में जरूर रखनी चाहिए, अगर उसमें आप हार भी जाते हैं तो हार भी एक जीतने के लिए लेसन है, क्योंकि हर हार के पीछे जीत छुपी होती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, कई बार आदमी जब भी कैटेगरी में किसी में भी पार्टिसिपेट करता है वो देखता है कि मैं सेफ कहां पर हूं, भाई कौन सा जो अच्छा लड़का है जो पिछली बार भी चैंपियन था उसमें तो नहीं है, वो तो वो सेफ अपने को करके लड़ता है। लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचें, तो आप अच्छे लड़के के साथ अगर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें सेकंड भी आ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ये कभी भी ना सोचें कि मैंने जीत के लिए ही लड़ना है, और हार लेसन तो है ही, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं सभी अपने खिलाड़ियों से यही कहूंगा आप सबको कि आप नियम पूर्वक एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और पेशेंस जरूर रखें। अगर आप हार भी जाएं, ये कभी ना करें कि आप अपने कोचिज को या अपने रेफरी को दोष दें कि मैं तो फर्स्ट आ रहा था, मेरे को इसने सेकंड कर दिया। नहीं, आप बल्कि अपने जो जजेज हैं उनको बाद में मिलें और पूछें कि सर मेरे में क्या कमी थी, मैं उसमें अपना सुधार लाऊं, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहां पर जिन्होंने आने का भी मौका दिया, आप सभी के दर्शन हुए, इसलिए इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही है कि मैं मेरे को यहां पर आकर इतना संतोष और इतनी खुशी मिली है जिसका मैं मेरे पास कोई वर्णन नहीं है। ओम शांति।
सच में हमारे रेस्पेक्टेड बलबीर सिंह जी, जिन्होंने हमें एक गाइडलाइन दी कि कैसे स्पोर्ट्स में हमें वैल्यूज की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, हार और जीत में सब्र की जरूरत है, क्योंकि हार भी अगर उसको स्वीकार कर लें तो सफलता का हार एक दिन हमारे गले में जरूर आता है। और आपने यहां सुंदर टचिंग की, आप को यहां आना इतना अच्छा लगा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच श्री बलवान सिंह जी जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, आप कबड्डी खेल से और दिल्ली से पधारे हैं, हरियाणा के आप सर्वोच्च पुरस्कार 1992 में आपने भीम अवार्ड लिया था, 10 टाइम्स आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, 3 टाइम्स आपने एशियन गेम्स में मेडल लिया है 2010, 2014 और 3rd टाइम आप वर्ल्ड कप में भी मेडलिस्ट रहे हैं, 4th टाइम आपने साउथ एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया, और आप 2003 से कंटिन्यू नेशनल कोच हैं कबड्डी के, और विशेष चीफ कोच हैं आप जयपुर पिंक पैंथर के। और आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लाफिंग थेरेपी भी यूज करते हैं, तो इसका भी हमें डेमोंस्ट्रेशन आज के सेशन में अवश्य दिखाएंगे। एक बार तालियां बजा करके हम रेस्पेक्टेड बलवान सिंह जी का स्वागत करते हैं।
ओम शांति। चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर
विक्रम साहब और स्टेज पर बैठे महान हस्तियां और उनसे भी बड़ी हस्तियां यहां पर बैठी हुई हैं जो देश के अलग अलग कोण से आए हुए हैं और गृह मंत्री जी बैठे हैं हमारे यहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है लाइफ में अचीवमेंट किस कहां से मिलेगी हमारे को, अचीवमेंट मिलेगी हमें हंसने से। क्या कुछ भी हो तो लाइफ में कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो हम करते हैं, जो कुदरत करेगा तो उस पर तो हम क्या करें उसको, और जो अचीवमेंट नहीं हो तो हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यदि हमने अचीव नहीं किया तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। तो किसी भी स्थिति में हमेशा खुश रहो और पेशेंस रखो। और मैं बहुत कुछ सीखा हूं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जगबीर, और हम रेस कोर्स में थे। ये उस टाइम मैं थोड़ा सीनियर था इनसे, ये उसी फर्स्ट साल ही ये बेस्ट बॉक्सर बनकर आए थे। तो ये बड़े शांत स्वभाव के, बड़े रिजर्व, बड़ा कंसंट्रेशन, और मैं सोचता था ये क्या ऐसा खिलाड़ी, जबकि हमारी आदत डिफरेंट थी, हम हमेशा हंसते ऐसे बस मस्त। लेकिन इनका थोड़ा था, और ये मैंने अब देख धीरे धीरे पता चला इनका कितना बड़ा विजन था जो हम तो सोच भी नहीं सकते थे। इनका जो जो सोच थी, वो जितना पेशेंस, जो धैर्य, उन्होंने क्या कर दिया, यहां जंगल में मंगल बना दिया। तो ये मतलब मैं यहां आकर के मैं हैरान रह गया कि ये क्या है सब कुछ। और कोई ज्यादा टाइम नहीं, मेरे सामने देखते देखते, जबकि कुछ नहीं था। तो बहुत सालों से हमारा प्रोग्राम चल रहा था, एक बार आओ एक बार आके देखो, लेकिन जब आने से रात के 11 बजे तक उसने चला, 11 बजे तक कैंसिल था प्रोग्राम। लेकिन सुबह 4 बजे मैसेज आया, नहीं ऑटोमेटिक कि नहीं आप तो चलेंगे। नहीं तो 11 बजे मैंने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, भाई कुछ कृपा नहीं है, शिव बाबा की कृपा नहीं है तो क्या करें, उसी कृपा बिना हम जा भी नहीं सकते। सेटिस्फाइड आपको अपने आपको समझाने के लिए यही सोचा, लेकिन शिव बाबा तो शक्ति है। मैं सोच रहा धाना था, 100% प्लान थी, लेकिन रात के 11 बजे कैंसिल होगी तो फिर मेरे को बड़ा मन से काफी परेशान था। लेकिन शक्ति कितनी है उनमें, तब मैं फील करता हूं कई बार सर्वशक्तिमान है ये, हम जहां पर भी हैं कोई शक्ति है हमारे पीछे, जरूर मतलब याद करो। हाँ सुबह हमने जो एक सुबह हमारी लाइफ काफी चेंज आई, हम जब तब तक सोचते अपने आप को बहुत कुछ सोचते थे, यस हमें बहुत कुछ ज्ञान है खेलों के बारे में, आम उसके बारे में, क्योंकि हम हमेशा हमारा नेचर है कि पॉजिटिव रहे हैं। हमने लाइफ में आज तक ऐसा कोई एक टीम में कोच होने के नाते हमने किसी का अपनी तरफ से गलत सिलेक्शन नहीं किया, चाहे भाई भी हो, ये मेरा नेचर था। आज तक मेरे को किसी को याद नहीं हमने किसी से कुछ किसी का कुछ लिया हो, किसी से कुछ लिया, जबकि हम काफी बड़ी पोजिशन में रहे हैं, नेशनल कोच, वो भी एक कबड्डी के काफी मतलब वो रहता है उसमें। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आज तक कोई ऐसा नहीं किया ताकि हमें रिग्रेट हो, हमें दुख हो कि यार हमने उसका किसी का गलत किया। तो इसलिए मैं उसका सर्वशक्तिमान में जय हनुमान, मैं ज्यादा मैं जय हनुमान करता रहता हूं क्योंकि मैं शुरू से मानता हूं उनको, और मेरे शुरू से ही मैं अच्छे मतलब उस इन्वायरमेंट में आज पढ़ाई में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया। क्योंकि वो कहते थे जब हम पढ़ते थे वहां पर, जब क्लासेस थी बेंगलोर में, तो कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे ये वो, उनका रिस्पेक्ट ज्यादा क्लास में, क्यों क्लास में रिस्पेक्ट किसका है, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। हम खिलाड़ी अच्छे थे, वहां पर क्लास में रिस्पेक्ट हमारा नहीं होता था क्योंकि हम पढ़ने में कमजोर थे। मैंने सोचा यार हमारा यहां तो हमारा रिस्पेक्ट नहीं, बाहर निकलते तो काफी रिस्पेक्ट है, एक ह्यूमन नेचर है सभी की, ये एक साइकोलॉजी है सभी की, क्योंकि ये एक सोच है सभी की। तो हमने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा हूं आदमी क्या नहीं कर सकता। तब मैं देखा मेरे हाथ में एक, मेरी अलग से रूम था 6x8 का, मैं ब्रिगेडियर साहब से सवेरे बात ही कर रहा था। बेंगलोर में मैं गया, मैं देख के आया, वो टूटा फूटा था वो जगह। वहां इस जगह में हमने लाइफ एक साल गुजारा है और इसको हम वो मानते थे जैसे कि यही ताजमहल है। उसकी इतनी डिमांड थी उस टाइम। तो वहां पर मैंने एक हाथ में एक स्विच लगा लिया, जब भी रात को दाग आए ऑन करके पढ़ना शुरू कर दिया, जब नींद आए तो सो गया। तो लगन की बात बता रहा हूं, ये सभी के लिए। आगे आने वाले कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं यहां पर, उनके लिए तो अभी भी काम आएगा। कुछ मतलब पेरेंट्स बैठे हैं, अपने बच्चे के लिए काम आएगा। तो उस टाइम मैंने धीरे 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 इतना हृदय का, ये शुरू शुरू में जागोर आया था, फ्रांस से अपना जहाज आया था, उसमें कंप्यूटर साइंस थी, हमें कंप्यूटर पढ़ाते थे शुरू शुरू में, हमने तो देखा नहीं था पहले, कभी सुना भी नहीं था। 0 और 1 बाइनरी थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, हम लग गए फिर उसके पीछे। तो देखा कि मैंने उसमें टॉप के 97% नंबर आए मेरे। तो बोले भाई, रिजल्ट सुनाने से पहले क्या बोले कि ऐसा स्टूडेंट है एक, आप सरप्राइज करोगे जिसने टॉप किया है। मेरे को ये तो था, मैंने अच्छे नंबर लेके आया, मेरा इस बार अच्छे है, लेकिन ये पता नहीं था भाई ये किसके बारे में बोल रहे हैं। धीरे धीरे बोला नहीं, फिर वो बोले जी ऐसा कौन है आप सरप्राइज करने वाले, वो फिर बोले ये इंडेक्स नंबर एक से, पहले इंडेक्स नंबर देते थे, हमारा इंडेक्स नंबर मेरा 7 था, अभी भी ध्यान है। तो 10 नंबर से इंडेक्स नंबर से वो टॉप किया, फिर मेरा थोड़ा थोड़ा आई, मेरा 7 था, मैं हो भी सकता है वहां। फिर बता बाद में उन्होंने कहा यस ये इंडेक्स नंबर 7 है, उसने टॉप किया। तो तब मेरे को वहां यस, तो इसलिए कह रहा हूं लगन से क्या नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे मेरे को रिस्पेक्ट की चिंता होगी, क्लास में पूछेंगे तो फिर मेरे को नहीं बताऊंगा तो फिर बेइज्जती होगी। तो मैं इतना स्टडी करी ये जो अपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कि मेरे को लास्ट में धीरे धीरे ये बोलने लगता था, किसी को नहीं आता था, वो ये कहते थे कि भाई ये फाइनल अथॉरिटी। जब किसी को नहीं आता था फिर भाई फाइनल अथॉरिटी बताएगा, जो फाइनल, मेरा नाम भी, मेरे दोस्त है मेरे को फाइनल अथॉरिटी से जानते हैं अभी भी, कहीं तो नाम की जगह फाइनल अथॉरिटी बोलते रहते हैं। तो ये कहता हूं फिर चिंता हो जाती आदमी को रिस्पेक्ट के लिए। आप अपने बच्चे को बोलो बेटे तू श्रेष्ठ है, तू ये है, तू ये जो बोलते हैं ना, अपन आपको ये आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, ये सोच हमें तो पता नहीं था उस टाइम, लेकिन कुदरती हमारे मन में थी। आप आकर के हमें सिस्टम का पता लग गया, पहले हमें अभी लेट हो गए, लेकिन फिर भी कहें यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट ए गुड थिंग, यू आर ऑलवेज अर्ली टू स्टार्ट ए बैड थिंग। हम ठीक है, हम अभी भी आगे तब भी ठीक है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हैं, ये जो इतनी महान हस्तियां हमें यहां पर मिली और हमें बहुत सिस्टम वाइज हमें इतना ज्ञान हुआ कि ताकि हम भी अभी जो बाकी टाइम है हम आगे आने वाली जनरेशन को हम बता सकते हैं। और ज्यादा न कहता हुआ, कुछ गलती हो तो उसको अक्षमा करना। और ओम शांति। ये मेरे को भाई जगवीर कह रहे हैं लाफिंग थेरेपी हमेशा सीरियस रहे, और मेरे को हंसने कह रहे हैं। हमारा शुरू से वो कहते थे ये थोड़ा नाराज होती रहती है मेरे गृह मंत्री, क्योंकि मैं कभी मरने मुड़ने से डरता नहीं, ना कुछ बात करने से, बहुत डरती रहती है। मैं तो ये जो कोई बात होती थी महा भाई, मेरा तो सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हमारे मेरे मरने के बाद भी कोई बात हंसता हुआ आए। हालांकि ये सीरीज हो रही है अभी, मैं देख रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है।
बहुत ही सुंदर श्री बलवान सिंह जी, आपने कैसे सादा जीवन, उच्च विचार, हर क्षेत्र में अव्वल नंबर लेना। और मैं तो हैरान था, सर ने कहा कि होम मिनिस्टर जी बैठे हैं, तो लेकिन लास्ट में ही एक्सप्लेन हुआ कि इनकी धर्म पत्नी जी बैठे हैं जिनको वो होम मिनिस्टर कह रहे थे। थैंक यू वेरी मच। हम सबके बीच हमारी मिस अपर्णा कामली जी, जो कि नेशनल क्रिकेट कोच मुंबई से हैं, हम सबके बीच बैठे हैं, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई की कैप्टन रही हैं, आपको शिवा छत्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप पैरा शूट चैंपियन भी रहे हैं और जूडो में भी आपने गोल्ड मेडल लिया है। आपको मैं निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच आए और अपनी ग्रीटिंग्स आज के इस सेशन में रखेंगे मिस अपर्णा कांबली जी। विशेष बीसीसीआई की तरफ से आप नेशनल कोचिंग देते हैं, गोवा में, पांडिचेरी, मुंबई में भी दी है, बांद्रा, और ऐसे क्रिकेट कोच महिला शक्ति को हम नमन वंदन करते हैं। वेलकम प्लीज।
ओम शांति। वैसे तो हम कोचेज हैं जो ऑन फील्ड काम करते हैं, मैं हमेशा से बोलती आई हूं कि हम तो मजदूर लोग हैं, मिट्टी में काम करते, तो डायस पे आना और कुछ एड्रेस करना ये बहुत डरा देता है हमको अंदर से। लेकिन जैसे दीदी ने कहा कि जो अपना आज का थीम है, तो क्या टॉपिक है आज का? फर्स्ट वन एथिक्स। तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहली बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं वहां बैठी थी और मैं बोली नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाती, मैंने बात नहीं करनी, आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, आई वर्क ऑन द फील्ड। तो फिर दीदी ने बोला नहीं कोई बात नहीं, बाबा को याद करो और जो दिल में आए वो बात कर लो। तो आई एम ट्राइंग टू रीच यू आउट। एथिक्स मेरे लिए इन क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज एथिक्स, कोई बता पाएगा? ओके, टाइम की कमी है। मेरे हिसाब से मैं एथिक्स को इस तरह से देखती हूं कि एथिक्स आर अनरिटन लॉज, जो होते हैं अनरिटन लॉज कि कागज पे लिखे हुए नहीं रहते, लेकिन हमको उनका पालन करना रहता है। जैसे कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो खेला बॉल उसके पैड में जाके अटक गई, उसने बॉल हाथ से उठाया बॉलर की तरफ गया, क्या बॉलर अगर अंपायर से पूछता है हाउ इज दैट, क्या वो बैट्समैन आउट है? आउट है, है, वो बैट्समैन आउट है, बट दिस इज नॉट एथिकल। जैसे कल की मेरी छोटी सी स्पीच में मैंने आपको बताया था, जैसे वॉल्स ने ऐसे किया, उसने स्टंप उड़ाया नहीं, उसने मैंकडेड नहीं लिया, दैट ऑल्सो कम्स इन टू एथिक्स, जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एथिक्स, वो उसी इसमें है। अकॉर्डिंगली जो हम स्लेजिंग सुनते हैं, स्लेजिंग करते हैं, तो जिनको करना है कर लेने दो, वो उनका कल्चर है, हमारा कल्चर वो है नहीं। तो जरूरी नहीं कि हम जो बाहर वाले लोग करते हैं उसका अनुकरण करें, नॉट नेसेसरी। अब एक ऐसा वाक्य हुआ था जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी और उन्होंने कुछ बहुत स्लेजिंग वगैरह किया था, अपने मिस्टर कूल धोनी साहब कैप्टन थे, तो उन्होंने लंच टाइम हुआ, लंच टाइम के बाद में जब टीमें बाहर आई थी उन्होंने कुछ कमेंट किया था इंडियन टीम को। तो जब टीम्स बाहर आई, धोनी जी ने बोला दो लाइन कर दो, पूरी टीम दो लाइन करके खड़ी हो गई, और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए तो दोनों हाथों से क्लैप करने लग गए। दिस वॉज द आंसर बाय धोनी टू देयर स्लेजिंग। आई थिंक हमारी संस्कृति भी यही कहती है, एंड दीज आर द एथिक्स दैट आई फील यू नो कि हर प्लेयर ने अपनी जिंदगी में वो लाना है। जैसे सर जी बोले डोपिंग वाली बात नहीं करनी है, सच में नहीं करनी है। फॉरेन में क्या करते हैं, वो लोग डोपिंग करते हैं और वो इतना उनका मॉनिटर किया जाता है कि टूर्नामेंट से कुछ महीने पहले वो बंद कर देते हैं, उनका हाई पे रहते हैं लेकिन वो उस चपेटे में नहीं आते, टेस्ट में वो नहीं पकड़े जाते। तो ये सब चीजें बेटर है कि हम अवॉइड करें और जो अपना ट्रू स्पिरिट है वो स्पिरिट में खेलें। अब आई स्पिरिचुअलिटी की बात, तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये ज्ञान जब मैं खेलती थी अगर मुझे मिल जाता तो शायद पता नहीं मैं और आई वुड हैव रीच सम मोर हाइट्स। खेलने के टाइम पे तो हमें तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, कम ऑन फाइट इतना ही बोलते थे, कैसे फाइट करना किसी ने बताया नहीं। मेरी लाइफ में 2000 साल में एक ऐसा क्राइसिस आ गया मेरी लाइफ में कि आई वॉज रियली फेड अप। मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, आई वॉन्ट टू शट डाउन शटर्स ऑन द वर्ल्ड। ऑफिस जाती थी, घर पे आती थी, मम्मी को बोलती थी कि टीवी बंद कर दो, नहीं चाहिए मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आई वॉज कंप्लीटली डिजेक्टेड। और उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे एक शिविर चल रहा है तो आप जाओगे क्या? मैं बोली कि क्या शिविर है, क्या है? तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि क्या है, उन्होंने बोला कि वहां पे 10 दिन किसी से बात नहीं करनी है। मैं बोला राइट, आई एम ऑन फॉर दिस, क्योंकि मुझे बात ही नहीं करनी थी किसी से, ना मुझे किसी से बात करनी थी ना कुछ करना था। तो 2000 साल में मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि जो मैं इस पाथ पे, आध्यात्मिक पाथ पे मेरा पहला कदम था कि आई वॉज इंट्रोड्यूस टू विपश्यना। और जब मैं वहां चली गई और जो मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस आ गए तो तब तो ऐसे हो गया कि खजाना मिल गया। लेकिन आज तक मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूं। लेकिन अभी लास्ट सीजन में एक मेरे साथ ऐसा और एक हादसा हो गया कि दो आई वॉज प्रैक्टिसिंग विपश्यना, लेकिन वो टूर्नामेंट फेज में जब हम टूर पे थे तब नहीं हो पाया। और उस वक्त ऐसा कुछ हुआ जो मेरा गुस्सा था। सब लोग बोलते हैं कि आई एम अ गुड कोच प्रोवाइडेड आई कीप माई टेम्पर अंडर कंट्रोल, एंड विच वॉज नॉट हैपनिंग। और ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से मैंने टूर आधा छोड़ के मैंने वो असाइनमेंट रिफ्यूज किया, आधा असाइनमेंट मैं आधे में छोड़ के आ गई दीदी, गुस्से की वजह से, जहां पे मेरा भी नुकसान हुआ और बच्चे तो रोने लग गए। बच्चियां ऐसे गले मिल मिल के रोने लग गई, मैम आप मत जाओ, क्योंकि उनको इतना मिल रहा था, मेरे से प्यार मिल रहा था, मेरे से नॉलेज मिल रहा था, मेरे से हर चीज मिल रही थी। लेकिन जो एक पॉइंट था, जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु, जो गुस्सा था, उसकी वजह से हर चीज पे पानी फिर गया। उसके बाद में मैं दीदी के संपर्क में आ गई, जयश्री दी के। उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप यहां एक बार आके तो देखिए, रसगुल्ला आप चख के तो देखो मीठा है कि नहीं, आप बिना खाया कैसे बोल सकते कि नमकीन है। तो बोले चलो चलते हैं। मैं यहां आई, मुझे इस ये जो हम आज सीख रहे हैं इसके बारे में दीदी कुछ पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। मैं एकदम स्लेट होती है ना जिसपे हम लोग लिखते हैं बचपन में, वैसे एकदम कोरी पार्टी बोलते हैं हम लोग मराठी में उसको, एकदम कोरी पार्टी लेके मैं यहां आ गई थी। और जो पहले दिन इन्होंने कहा, दूसरे दिन हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप जो मेरे प्रश्न अनुत्तरित थे जब मैं विपश्यना के लिए बैठी थी, जो मेरे ही क्वेश्चन मुझे ही सॉल्व नहीं कर पा रही थी मैं, तो बहुत बहुतों के आंसर्स मुझे यहां मिल गए। और मैं जब भी 7 बजे वाली अपनी जो सेशन रहती थी, मेरी तो आंखों में झरी लगी रहती थी। ईच पॉइंट दैट दे वुड से इट वॉज टचिंग मी एंड इट वॉज गिविंग मी माई ओन रियलाइजेशन, कह रहे ये ऐसा भी है, ये ऐसा है। और इसको आज तो उन्होंने कहा कि हाउ टू हैंडल एंगर, उन्होंने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। मैं यहां सामने बैठी थी और पूरा टाइम आई वॉज क्राइंग बिकॉज दैट रियली टच्ड मी एंड आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई केम हियर। सर जी आई एम रियली थैंकफुल। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूं, जो बच्चे हैं या कोचेज हैं जो भी हैं, सबको यही कहना चाहती हूं कि यहां पे जो भी शिक्षा मिली है ये तो अपने को 5 दिन में यानी खाली वो मधु होता है ना, मधु हनी, वो खाली मधु चटा दिया है अपने को, अपने को। और इससे क्या हुआ है दीदी, हमारी मेरी तो भी भूख बढ़ गई है जी। जरूर मैं सबको कहती हूं कि प्लीज कंटिन्यू विद दिस, कीप द प्रैक्टिस एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है अंदर से कि मैं सही हूं, आप सही हो, और ये पाथ जो है हमने चूज किया है, डेफिनेटली देर इज नो अदर आंसर देन अ सक्सेस। सो प्लीज फॉलो इट एंड ऑल द बेस्ट। ओम शांति।
थैंक यू कामली जी, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम सबको शेयर किया, और ये आपका घर है, ईश्वर का घर, सो आपका अपना घर है, आप जब चाहें जैसे चाहें आपका स्वागत है। आपका मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूं अपनी ग्रीटिंग्स के लिए। अभी जैसा कि हमारे कोचेज ने बताया कि यहाँ आने से उनको इतना लाभ मिला, मेडिटेशन की विशेष टेक्निक्स के बारे में हम सबने जाना, राजयोगा की क्या इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स लाइफ में उसके विषय में हमने जाना, तो अभी हम लेते हैं कुछ समय का मेडिटेशन एक्सपीरियंस हम करेंगे। हमारे बीच राजयोगी ब्रह्मा कुमारी तारा बहन, जो कि 47 वर्षों से 47 ईयर्स से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में, और 34 ईयर्स से आपने अपनी जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। विशेष आप तिलौड़ा से हैं और आपने देश विदेश में भी अनेक आत्माओं की सेवाएं की हैं। संस्कृत में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आज हम सबके बीच हमारी राजयोगी तारा बहन जी हमें कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन कराएंगी और हम सब उसका अनुभव करेंगे। तारा बहन जी,
ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, पूरे भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे खिलाड़ी, कोच, आज हम विशेष खेल परफॉर्मेंस में राजयोग का चमत्कार, इसका कुछ समय के लिए अनुभव करेंगे। जब कभी कहीं आग लगती है तो उस समय सबसे पहले व्यक्ति अपनी अनमोल चीज और अपनों को बचाता है। उसकी तुलना में जब एक स्पोर्ट्स पर्सन उसको अपनी अनमोल चीज स्पोर्ट्स है जो उसे अलग यूनिक पहचान देता है, वही उसकी संपत्ति, खुशी, उमंग, उत्साह और जीवन का आधार एवं लक्ष्य होता है। उस आग की तरह जब कभी कोई समस्या रूपी आग, परिस्थिति रूपी डिजास्टर उसके मन को घेर लेता है, निराशा रूपी काले बादल जब जीवन में छा जाते हैं, तब एक साधारण खिलाड़ी भी उन भावनाओं से प्रभावित होकर के अपने सबसे प्यारी संपत्ति खेल को हारने में अनुभव कर लेता है और उस जीत को अपने से बहुत दूर कर लेता है। उसी समय अगर राजयोग का चमत्कार तब काम आता है, राजयोग अपनी उस सुसुप्त अवस्थाओं को, मर्ज रूप में रही हुई दैवी शक्तियों को अपने जीवन के अंदर जागृति दे देता है। अपने असली अस्तित्व की राजयोग पहचान देता है और उसके लिए कैसी भी परिस्थिति भी है, एक राजयोगी अभ्यास करने वाला खिलाड़ी कितनी भी असंभव परिस्थिति को संभव कर अपने अंदर की स्पोर्ट्स आर्ट को इंचिस कर सकता है। जैसे एक खिलाड़ी को अपने कोच के ऊपर संपूर्ण भरोसा रहता है, उसी तरह राजयोग का खिलाड़ी अपने ऊपर और अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर संपूर्ण भरोसा, विश्वास करना सीख जाता है और विद कॉन्फिडेंस के साथ सर्वशक्तिमान को ट्रेनर के रूप में परमपिता परमात्मा को अपने अंदर आत्मविश्वास के भरोसे भरपूर करने लगता है और वह कॉन्फिडेंस के साथ आपको विषम परिस्थिति में भी जीतने का उमंग, उत्साह और एक श्रेष्ठ शक्ति अपने में प्राप्त कर लेता है। वैसे तो एक स्पोर्ट्स पर्सन मेन योगी की तरह ही कहलाता है। एक योगी संसार के समस्त आकर्षण से परे सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक समस्या से ऊपर कहीं दूर अकेले ही साधना को साधन में लगा रहता है। जैसे कि खिलाड़ी संसार की समस्त बातों से परे अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को साधने में सदा ही लगा रहता है। एक राजयोगी संपूर्ण सत्य ज्ञान से, ज्ञान के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा समाज में, परिवार में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, खुशनुमा जीवन जीता है और उस खुशनुमा जीवन से अपने खेल को जीत लेता है। तो आइए एक राजयोगी असफलता के समय अपने आप को, अपने भाग्य को, परमात्मा को कोष कर अपने बची हुई शक्तियों को, अपने परफॉर्मेंस को कहां कभी रह गए शांत मन में उसको ठीक कर देता है। एक खेल हमेशा द्वंद होता है, जिसको अंतर में कोई द्वंद न हो वही सफलता को प्राप्त कर लेता है। जिसको राजयोग के द्वारा द्वंद को समाप्त कर स्पष्ट जीवन जीने की राह बता देता है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम स्वस्थ होकर के बैठेंगे और अपने मन और बुद्धि के रॉकेट के द्वारा अंतर जगत की यात्रा की ओर हम अपने को ले चलेंगे। तो स्वस्थ होकर के अपने सीट पर बैठेंगे और साथ ही साथ एक मन में खुशी पैदा करेंगे, उमंग और उत्साह को पैदा करेंगे, इस देह और देह की दुनिया से पार, पांच तत्वों की दुनिया से दूर अपनी अनंत यात्रा की ओर मन को ले चलेंगे। मनुष्य जीवन के एक बैडमिंटन की तरह कहा गया है, अथवा लॉर्ड टेनिस रॉकेट की तरह होता है। जब वो जन्म लेता है तब वो रॉकेट के अंदर कोई भी तार चुन लेता है, परंतु जैसे जीवन की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही एक तार करके वह रॉकेट संपूर्ण रूप से निपुण हो जाता है। जब वो संपूर्णता रूप से तानो बानो से भरपूर हो जाता है तब वो जीवन रूपी गेम को खेलने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तार इतने सजे हुए एक्यूरेट बंधे हुए होंगे उतने टारगेट पर बॉल हेड होता है और मंच जीतने का चांस बढ़ता जाता है। अंततः एक राजयोगी जब परमात्मा को अपने सच्चे दिल से याद करता है तो उसके जीवन के अंदर समस्त संस्कार प्रत्येक रूप से अपने जीवन में सेट हो जाता है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने में नजर आता है और वो जीतने की कला में, सहयोग की कला में, समानता की कला में अपने आप को निपुण महसूस करता है। विषम परिस्थिति में भी खुशी खुशी पार करने में, योग की सिद्धि धारण करने में वो सिद्ध हो जाता है। परमात्मा की शक्ति अपने अंदर महसूस कर लेता है, अपने अंदर के संस्कारों को साधना के कार्य में लगा देता है और वो अपने जीवन रूपी मंच को सदा खुशी खुशी जीतने का आनंद अवश्य उठा लेता है। ये है खेल प्रदर्शन में राजयोग का सही चमत्कार। ओम शांति। ओम शांति। अंत में मैं अपना एक मिनट में अनुभव सुनाती हूँ कि एक मिनट का कि जब मैं भी विद्यार्थी काल में थी उस समय 100 मीटर रेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने लक्ष्य लिया था मुझे फर्स्ट आना है और मैं बचपन से ही राजयोग की अभ्यासी थी। अपने जीवन में राजयोग बचपन से ही अपनाया हुआ था और जब ये 100 मीटर रेस में लंबा न बताते हुए पता है एक दो बार और जब फाइनल दौड़ने के लिए कहा गया रेस में और जब फाइनल पट्टे पर हम खड़े हैं और जब दौड़ने की बारी आई उस समय मैंने यही राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में अप्लाई किया कि शिव पिता परमात्मा आप मेरे साथ हो, मेरा हाथ पकड़ के आप चल रहे हो और ये भ्रुकुटी आपका अकाल तख्त है, आप यहाँ पर विराजमान हो, विजेता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय मेरे गले का हार है। यही पॉजिटिव थिंकिंग से मैंने जब सीटी बजी फाइनल पर दौड़ना शुरू किया। मेरे जो साथी थे कंधे से कंधे, कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर दौड़ रहे थे, लेकिन जो मैंने उस प्रभु पिता परमात्मा को आह्वान किया था और उसी समय मेरे को ये दौड़ते दौड़ते पॉजिटिव थिंकिंग यही संकल्प आया कि मैं फाइनल पट्टा आने पर हाई जंप लगा दूं, दौड़ रहे से कंधे से कंधे, कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर, लेकिन जब फाइनल पट्टा थोड़ा दूर था उससे पहले मैंने फाइनल हाई जंप ही लगा दिया और मेरा सबसे पहला नंबर 100 मीटर रेस में आया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये राजयोग मेडिटेशन का चमत्कार, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। ओम शांति।
थैंक यू तारा बहन, जो कि हमारे स्पोर्ट्स विंग की एक्टिव मेंबर भी हैं। और अब हम उन महान हस्ती से जो कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, रेस्पेक्टेड ब्रिगेडियर डॉक्टर विक्रम सिंह जी, हम सबके बीच जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल रेफरी और जज हैं पिछले 20 वर्षों से। आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में पीएचडी की है, आपने कॉमनवेल्थ गेम एंड मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में इंडिया, ब्राजील और कोरिया में अपना पार्टिसिपेशन दिया है, 7 times आप एकेडमी पास आउट हैं, विशेष घुड़सवारी में आप नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं और स्काई डाइविंग, बॉक्सिंग, गोल्फ एंड घुड़सवारी के आप लाइफ मेंबर भी हैं। आपने साउथ एशियन गेम्स 2010 में भी अपनी सेवाएं दी हैं और आज हम सबके बीच आज के सेशन में आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं। मैं एक बार चाहूंगा तालियां बजा करके हम ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बचपन के कुछ पल आपके साथ बीते हैं और आज आप हम सबके बीच हैं, आप हम सबको अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। ब्रिगेडियर साहब,
ओम शांति। जैसा कि अपर्णा बहन जी ने कहा था कि भी हम ग्राउंड के लोग हैं और स्टेज पे आके बोलना और भाषण देना ये हमारा बेसिक नेचर नहीं है, लेकिन अब सेना में इतने साल हो चुके हैं तो इस तरह की फोरम मिलती रहती है बात करने के लिए, पर एज ए स्पोर्ट्समैन नॉर्मली स्टेज को आदमी बचाता है। तो मैं सबसे पहले तो शिव बाबा का, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, जानकी दादी का, अपने बसवराज भाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शशि दीदी, जगबीर भाई और मंच पर आसीन सभी महानुभाव का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया और आपसे मंच साझा करने का मौका दिया। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्होंने हैरान किया चीफ गेस्ट बना के, अगर मैं वहां बैठने में बहुत अच्छा लगता है मुझे नीचे। मेरे भी लाइफ के बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो मैं बड़ों से कम और बच्चों से ज्यादा शेयर करना चाहता हूं। मेरे जीवन में पढ़ाई और खेल के बीच में द्वंद्व रहता था और मैं पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट लेता नहीं था और वही स्थिति आज भी है बच्चों की। दो बच्चे बैठे, मैंने इनसे बात करी। मैं 10th में ग्रेस मार्क लेके पास हुआ हूं और 33% से ग्रेजुएट हूं, क्योंकि मैं तब खेलता नहीं था। तो जब मैंने खेलना शुरू किया, मैंने खाली फॉर्मल एजुकेशन 11th तक स्कूल की फीस देके की है, बाकी की सारी एजुकेशन मैंने एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट की है। और आज मेरे पास बीकॉम, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड 5-6 तरह के डिप्लोमा हैं जो एंड दे केम माई वे क्योंकि मैं खेलता रहा। तो अगर किसी के मन में ये सोच है कि मैं 10th class में 10th पढ़ूं, या पेरेंट्स कह रहे हैं या मैं खेलूं, तो मेरी सलाह ये है कि आप खेलो, 10th अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हम सब इच्छा रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी रिजल्ट मेहनत के अनुसार नहीं आते हैं, तो तब जरूरत पड़ती है कि आप अपना मानसिक संतुलन ना खोएं, आप हताश ना हो। और ये कहना तो बहुत आसान है कि आप हताश ना हो, लेकिन अल्टीमेटली हो जाते हैं। तो आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो सेमिनार है, ये इन्हीं मुद्दों को एड्रेस करने के लिए आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हैं। एक आपको हर उस चीज का जवाब मिले जब आप असफल रहे, आपने मेहनत करी और रिजल्ट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आया, तो उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद आपने अपने आप को एकाग्र करना है, अपने आप को पॉजिटिव थॉट देनी है और अपने आप को याद दिलाना है कि इस फेलियर से मैंने अब क्या सीखा है, कमी कहां रह गई थी। मैंने अपनी पीएचडी की स्टडी में ये पाया कि मुझे एक सवाल हमेशा झंझोड़ता रहता था, 20-30 साल हो गए स्पोर्ट्स में। एक आप अगर अब गौर करो, रिजल्ट याद करो जिस भी इवेंट का आपको है, कि हमारे खिलाड़ी एक तो जाते बहुत नंबर में हैं और मेडल बहुत कम लाते हैं। दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, जितने मेडल आते हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा होते हैं। अगर देश ने 10 मेडल जीते तो उसमें मुश्किल से एक गोल्ड, एक सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल होंगे टीम के, जबकि ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल में एक एक सेकंड का आपस में और बहुत कम फर्क रहता है, चाहे वो बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस हो चाहे एथलेटिक्स की हो। तो ऐसा क्यों है कि हम ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा क्यों जीतते हैं जब हम गोल्ड जीत सकते थे? तो मैंने इसी मुद्दे पे अपनी रिसर्च और पीएचडी की है, तो उसमें मैंने पाया कि जो बाकी कंट्रीज हैं, अब हम स्टेडियम, पैसा, इनाम का जो मिलता है आज के जमाने में, या जो फैसिलिटीज हैं, वो कोई किसी देश से हमारे देश में कम नहीं है, बल्कि हमारे बहुत सारी फैसिलिटी बाहर के देशों से, कई देशों से बहुत अच्छी हैं। फिर भी हम वही हैं, या थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, अभी हम एक अच्छे स्पोर्ट्स डेवलपिंग नेशन में आते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना एफर्ट हम डाल रहे हैं। तो अंत में आके यही पता लगा कि हमारे यहां मेंटल ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं है किसी टीम के साथ। बाहर लोगों के इंडिविजुअल मेंटर्स हैं जो मेंटल ट्रेनिंग आपको इंडिविजुअल देते हैं या टीम के ऊपर डिटेल्ड है। यहां यह अभी भी स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, कोई गवर्नमेंट का बहुत फॉर्मल अरेंजमेंट अभी तक अब शुरू हुआ है लेकिन वो है नहीं। तो अल्टीमेटली जो इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, बात वहीं आकर रुकती है कि हमें अपनी मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। बाकी तो हम सब बराबर का करते ही हैं। तो जो वो मेंटल स्ट्रेंथ आपको लास्ट 30 मीटर में, 10 मीटर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको इसी बॉडी में से ढूंढनी है, वो आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आपका माइंड वो उतना स्ट्रांग है। मिल्खा सिंह जी एक सेकंड से फोर्थ रह गए थे, तो अगर वो कोचिंग और वो एनर्जी होती तो एक सेकंड उनके फेवर में होता। तो ऐसे हमारे में बहुत बैठे हैं जो हम बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और वो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल में बदल जाता है। तो मेरी यही आप लोगों को सलाह है, पढ़ाई का प्रेशर ना लें। आप अच्छा खेलेंगे तो पढ़ाई आपको फॉलो करेगी अपने आप। ये मैं किसी को पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप उदाहरण हूं इस बात का। एक मैं ग्रेस मार्क से पास लेकर 10th किया हूं, 3rd डिवीजन से ग्रेजुएट हूं और उसके बाद मैंने सारी चीजें अपनी लाइफ में की है और मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से की है। मैं यूनिवर्सिटी में 2nd भी रहा हूं। ये प्रोग्राम युवाओं के लिए ज्यादा है क्योंकि जो खेलते हैं वो यंग ही लोग खेल सकते हैं, तो आप लोग इसका पूरा बेनिफिट लें। और जो आपके साथी यहां नहीं आ पाए किसी वजह से, जिनको आप जानते हैं, तो जो आपको मिला है उनसे पक्का शेयर करें ताकि एक बेनिफिट उन सबको मिले और हो सकता है आपकी बात सुन के वो भी काफी सक्षम हो और अपने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सके। मैं उन खिलाड़ियों, कोचेज, पेरेंट्स जो आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकाल के इतनी दूर, ये आसान नहीं होता ट्रेन से आना, समय निकालना, स्कूल छोड़ना, या आप किसी व्यवसाय में हैं वो व्यवसाय छोड़ना, लेकिन जब आप यहां आए, जब आपको प्राप्ति का पता लगा तो आपको यकीन हुआ होगा कि जो आपने ये समय निकाला ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया है और बहुत अच्छा रहा कि आप यहां आए। और जैसा आपने अनुभव सुना, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत लेट आए यहां पे, तो आप भाग्यशाली हो, जो यंग बच्चे आए हैं वो बहुत समय पे आए हैं, तो आपको पूरी जिंदगी इसका लाभ मिलेगा। मैं बॉक्सिंग गेम से जुड़ा हूं, मैरी कॉम, विजेंदर, ये नाम आपको मालूम होंगे, इनको मैं बचपन से, बहुत छोटी उम्र से बड़ा होता हुआ देखा है मैंने। इनके इनके मैचेस में मैं रेफरी रहा हूं इंडिया के अंदर। ये अपने आप में एक प्रेरणा है। इनके घरों को जाके देखो, कोई सुविधा नहीं है इनके पास। इनके पास खाली मेंटल टफनेस है, एक एक जिद है कुछ करने की, और उस जिद की वजह से अब आप देखिए कि मैरी कॉम की एज देखिए, 3 बच्चे हैं उसके, और जिद इतनी पक्की है कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी जिद चाहिए, ऐसे रोल मॉडल चाहिए आपको। तो आप ऐसे रोल मॉडल के बारे में पढ़िए और उनकी अच्छी चीजों को अपनी जिद बनाइए, तो ये आपके काम आएगी और आप सब लोग फिर उन्हीं की तरह बन सकते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेके, मुझे मालूम है कि लंबा प्रोग्राम है और आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर जो ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया है, क्योंकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम चलाना ये आसान नहीं होता है जब इतने सारे लोग आए हों। तो जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं सभी बहन भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जगबीर भाई और मैं एक साथ बॉक्सिंग किए हैं और हमारा वेट भी एक ही होता था। तो क्योंकि मैं छोटा था और मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता था, तो मैं भूखा रह के अपना वेट कम करता था। तो हम दोनों 7 साल इकट्ठे चैंपियन रहे हैं, ये अपने वेट में, मैं अपने वेट में। और उन्हीं दिनों में जब बलवान भाई कबड्डी करते थे तो हम तीनों एक ही बैच के हैं एक्चुअली, और जगबीर भाई लौकिक में मेरे रियल ब्रदर हैं। धन्यवाद, जय हिंद।
थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। वैसे तो हम ये परिचय देते पर आपने दिया, क्योंकि जगबीर भाई आपके बड़े भाई हैं और हम भी उसी बल्लभगढ़ सिटी से हैं। आज विशेष आपने ये हम सबको समझाने की कोशिश की कि खेलों से सब कुछ संभव है, एवरीथिंग पॉसिबल बाय स्पोर्ट्स। जैसा कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको किया और हम सबको बताया, इस पर 2 लाइन मुझे याद आती हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती हूं। थैंक यू भाई साहब। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग बीके डॉक्टर जगबीर सिंह जी, जो कि जिन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में पिछले 25 सालों से दिया और स्पोर्ट्स विंग को डेवलप किया, और आपका जो प्लान था, जो विजन था, जिसकी वजह से आप हम सब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से लाभ ले रहे हैं, और आगे भी भविष्य में हम स्पोर्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी हमारी क्या योजना है, मैं निवेदन करूंगा भ्राता बीके डॉक्टर जगबीर सिंह जी, आप आकर के हमें अपना एक्शन प्लान बताएंगे। जगबीर सिंह जी,
ओम शांति। जैसा कि अभी ये सारा सेशन चल रहा था, तो बहुत टाइम से हमारा ऐसा प्लान चल रहा है कि कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाएं ताकि ये सब बातें पूरे देश में फैलें। बहुत सालों से लगे हुए हैं। कल एक बहुत अच्छा टॉपिक पैनल डिस्कशन में सामने आया, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन स्पोर्ट्स, और ये विंग स्टार्ट हुई थी मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से। वहां उनकी एक टीम आई थी यहाँ 1999 में। उनके प्रिंसिपल सर भी हमारे बीच में बैठे हैं, शायद हैं यहाँ पे कर्नल साहब, बिश्नोई साहब। तो कल उन्होंने कहा कि आप ये कैंपेन मेरे स्कूल से स्टार्ट करो, मैं पूरा कोऑपरेशन दूंगा, गवर्नमेंट से भी आपको एड कराऊंगा उसमें। हमारे पंजाब जोन के कोऑर्डिनेटर भी बैठे थे, मेहरचंद भाई। तो जून या अगस्त में हम एक ऐसा कैंपेन स्टार्ट करेंगे, तो उसी के ऊपर मैंने एक्शन प्लान बनाया है। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, तो हमारे एक अंकल थे, हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन वो मूवीज वगैरह बहुत देखते थे। गांवों में जैसे एक चलन होता है, तो मूवी में देख करके फिर वो हमें कभी दारा सिंह की कुश्ती दिखाने ले जाते थे, कभी रंधावा की कुश्ती, फिर कभी दंगल में ले जाते थे। उनको ये था कि इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, लेकिन कभी ऐसा एम नहीं था कि खिलाड़ी बनना है। फिर एक बार यूनिवर्सिटी में गए, एमडी यूनिवर्सिटी में, तो पहली बार में ही मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही बॉक्सिंग में। फिर किसी ने आइडिया दिया कि एयरफोर्स में चले जाओ, वहां आपको स्पोर्ट्स का काफी चांस मिलेगा, तो एयरफोर्स में जाना हुआ। तो जैसा कि विक्रम भाई बता रहे थे कि हमारा ऐसा बाय चांस हुआ कि इनकी ट्रेनिंग बेंगलोर में थी, मेरी मैड्रास में थी। मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग था, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो जब चैंपियनशिप हुई तो इनका भी नाम फेदर वेट में और मेरा लाइट में। तो प्रैक्टिस तो हम साथ ही करते थे। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जहां तीन राउंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम फाइट करते हैं, और जब बाउट खत्म हो जाती है तो दोनों बॉक्सर हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखा होगा, तो सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्प्रिट बॉक्सिंग में देखने को मिलेगी आपको। तो ऐसे ही सब चलता रहा। तो जब मुझे बाबा का परिचय मिला तो मैंने तो उसी टाइम ये संकल्प कर लिया था कि मुझे रेस्ट ऑफ द लाइफ ये सेवा करनी है। और मैंने वहां कोशिश की कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा एयरफोर्स से किसी तरह बाहर आ जाऊं, क्योंकि वहां 20 साल का साइन करवा लेते हैं, 20 साल पहले आप छोड़ नहीं सकते। और मेरा लक्ष्य था कि मुझे सेवा में लगना है। तो मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्राई किया, जिसमें एक बार डाउन हो गया था, दूसरी बार वेटिंग लिस्ट हुआ, और फाइनली मतलब किसी तरह से वहां बाहर आने का मौका मिला। क्योंकि 2 महीने के अंदर हमें डिसाइड करना था कि कंटिन्यू रहना है एयरफोर्स में या बाहर जाना है। तो किसी तरह बाबा को कोई प्लानिंग मंजूर थी, तो 1 महीने में मेरा डिस्चार्ज सैंक्शन हो गया था। और वहां से फिर एक एयरलाइन में एज ए कार्गो मैनेजर सेवा दी। फिर 1 साल के बाद अशोक भाई गावा, उन्होंने प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ ज्ञान सरोवर में आए। वो एक काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स के माध्यम से, जैसा विक्रम भाई ने बताया कि पढ़ाई में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, तो आप ज्यादा स्पोर्ट्स खेलो, आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने भी यही रखा, वहां से आने के बाद इंस्टीट्यूशन में भी कंटिन्यू रखा, अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा। फिर एक संकल्प था कि स्पोर्ट्स विंग बने, तो बड़ों ने, दादियों ने, दीदियों ने एक्सेप्ट किया कि चलो आप कहते हो तो ऐसा हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो ये लास्ट विंग बनी थी जब हमने एफर्ट्स किए, सिक्योरिटी विंग और स्पोर्ट्स विंग। तो करते करते अभी हम लोग यूनाइटेड नेशंस में गए, ओलंपिक में, सिंगापुर ओलंपिक में शशि दीदी का हमें इनविटेशन मिला, फिर ब्राजील में मिला, ब्राजील ओलंपिक में। लेकिन थोड़ी सी यही एक मन में रहता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें इसका सपोर्ट करती है, कभी करती है कभी नहीं करती। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से हमारे शर्मा जी आए हुए हैं, तो आप भानोट साहब से कह के केवल हमारे एक एक दिन के कैंप जो नेशनल टीम है उसके साथ लगाएं, और फिर उनकी फीडबैक लेकर के और आप देखें कि इसका क्या फायदा हो रहा है। तो हम इतनी अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली ना होने के कारण इसकी कोई खास वैल्यू नहीं हो रही है। हम जाते हैं, अपना खर्चा भी करते हैं, एनर्जी भी देते हैं, और फिर कई बार वहां मना कर देते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। तो अगर ये ऑफिशियली हो जाए गवर्नमेंट से या फेडरेशन से, तो आप 2020 में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो गुरदीप सर से और शर्मा जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक लेटर ड्राफ्ट करके और मिनिस्ट्री में, ओलंपिक में और ये फेडरेशन में आप अपना एक्सपीरियंस वहां पे लिखें, और खेलो इंडिया में भी इसका आप अपनी तरफ से मेंशन करें। तो मैंने 3-4 पॉइंट कुछ लिखे हैं जो हम एक्शन प्लान में करते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नाडा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फेडरेशंस, कि उसके अंदर राज्यों का माइंड पावर कैंप्स लगाए जाएं। इसके बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम, जो एक स्कीम है गवर्नमेंट की, और एक ओलंपिक गोल्ड कोस्ट, ये भी एक स्कीम है। अगर इस स्कीम के द्वारा भी हमें चांस मिलेगा ट्रेनिंग कराने का, तो उनके साथ भी हम कनेक्ट होंगे। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, वो भी माइंड पावर ट्रेनिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी जहां जहां भी शूटिंग रेंज है इंडिया में, तो वहां हम इसकी ट्रेनिंग कराने के लिए उनको लिखेंगे और जब चांस मिलेगा तो वो करेंगे। हमारा कोशिश होता है कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं इंडिया में, तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ओलंपिक डे 23 जून को, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को। तो हम अपने ईमेल के द्वारा सेंटर्स को एंकरेज करते हैं कि खिलाड़ियों को बुलाएं, उनको सम्मानित करें और उनकी उनको राजू का मेडिटेशन के बारे में अवेयर कराएं। तो ये एफर्ट्स हम कंटिन्यू रखेंगे इस साल भी। फिर जैसा कि कल एक प्लान बना था कि कैंपेन या प्रोजेक्ट एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन स्पोर्ट्स इन एवरी स्टेट, हम लोग स्टेट वाइज कैंपेन निकालें, हरियाणा से स्टार्ट करेंगे जिसमें मेहरचंद भाई भी एग्री हैं कि ऐसा हम 1 वीक या 10 डेज के लिए केवल हरियाणा के अंदर जो भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैं, स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं, यहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर आई हुई है डॉक्टर डॉली हैं हमें, तो उन्होंने भी पूरा कहा है कि मैं इसका ड्राफ्ट करूंगी, वॉलंटियरिंग करूंगी और गवर्नमेंट एजेंसी से मिलके, अगर गवर्नमेंट से फंड मिलेगा तो उसके लिए भी वो एफर्ट्स करेंगे। तो ये कैंपेन हम अभी हरियाणा में निकालेंगे, उसकी रिपोर्ट बना के फिर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हर स्टेट में हमारा ये संकल्प रहेगा कि इस साल हम हर स्टेट को कवर करके और नेक्स्ट ईयर आपको उसकी रिपोर्ट यहाँ दें कि हमने हर स्टेट में ये कैंपेन निकाला है। तो अगर आप इन बातों से सहयोग एग्री हैं तो अपना हाथ उठा करके सेकंड करेंगे एक्शन प्लान को। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे बीच हमारे स्पोर्ट्स विंग के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता बी के डॉक्टर बसवराज राज ऋषि जी, आप हुबली से हम सबके बीच, आप जोनल डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हुबली, आपने एमए फिलोसफी एंड पीएचडी गीता में की है, डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्टर हैं आप वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर येलापुर, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप कर्नाटका दर्शन परिषद के, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोशल फिलोसफी, चीफ एडिटर हैं आप विश्व नव निर्माण स्पिरिचुअल मंथली मैगजीन के, और हमारे इन्होंने रिसर्च की है भगवत गीता पर कि किस तरीके से ईश्वरीय अवतरण इस संसार में हो चुका है और एक महान हस्ती हम सबके बीच हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी जोरदार तालियों से भ्राता जी का, डॉक्टर बसवराज राज ऋषि जी का वेलकम करेंगे, हमें अपनी ब्लेसिंग ग्रीटिंग्स देंगे।
ओम शांति। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परम पिता परमात्मा ईश्वर की मधुर स्मृति में मंच पर विराजमान महान विभूतिगण, साथ साथ मेरा भाई और बहनों, आज अपना स्पोर्ट्स विंग के आप लोगों का सबको बधाई देने का ये महान सत्र है। मेरे को आज बहुत हर्ष की बात है, अपना मंच पर जो भी विराजमान है, हर एक विभूतिगण अपना ही स्पिरिचुअल एंड वैल्यूज के बारे में हम लोगों को बहुत बहुत अपना भाव को व्यक्त किया है। दूसरा भी एक आश्चर्य की बात है, अपने मंच पर बलबीर सिंह जी है, सेकंड है बलवान सिंह जी है, तीसरा है जगबीर सिंह जी है, चौथा है विक्रम सिंह जी है। ये तो बाबा का कितना अच्छा रतन है, सब मैं समझता हूं वीर 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 है। अपना स्पोर्ट्स विंग में ऐसा महारथियों को वैलेडिक्टरी में समावेश भगवान ने किया है। मैं साथ साथ अपना अपर्णा दीदी जी ने मुंबई से पधारा है, वो भी महान व्यक्ति है, अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कोच भी है। मैं समझता हूं एक हर्षित की बात है, आज अपना विशेष टॉपिक है एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। सो अपना भाई बहने अभी हम लोगों के सामने अपना विचार रखा है, एथिक्स क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, सब कुछ अभी इतना दिन से हम लोग जो स्टडी किया है उसमें ये सारी बातें शामिल है। वो मैं एक बात आप सबको विनंती कर रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पोर्ट्समैन एंड ए स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन, ये बात को मैं थोड़ा आपका विचार लेने के लिए चाहता हूं। अभी तक मैंने जो बताया, स्पोर्ट्समैन हमेशा मसल पावर माइंड पावर के साथ खेलते हैं, मैं समझता हूं। स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन ये क्या है, ये कौन है, ये मसल पावर ब्रेन पावर प्लस सोल पावर के साथ वो खेलते हैं। भगवद गीता में स्पेशली इसी बात को क्लियर करने के लिए एक श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो व्यतीतम प्राहुहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। मना क्या है, ये हमेशा हमें समझता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये क्षेत्र है, ये शरीर है क्षेत्र है, हमेशा हमें देखता है सोचता है करता है शरीर के बारे में। इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान बताया हम लोगों को, बच्चे आप देह नहीं हैं, अभी तक आप देह समझा है इसलिए आपको देहाभिमान बढ़ गया है, सचमुच बच्चे आप देह नहीं है, देह में विराजमान होने वाला क्षेत्रज्ञ है, माना आत्मा है। आत्मा जब इस शरीर में नहीं है, शरीर कितना बलवान हो, तेज हो, जगबीर हो, बलबीर हो, जो भी हो, कितना शक्ति भी हो, आत्मा शरीर में नहीं होने से ये शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए स्पोर्ट्समैन एंड स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन में डिफरेंस क्या है, जो आत्मा समझ के शरीर के द्वारा जीवात्मा बनकर जो खेल करेंगे वही सच्ची खिलाड़ी हो सकता है, ये राज्यों का मीनिंग है। इसलिए हम सब इसी बात को हम लोग स्पेशली विशेष आसक्ति लेकर अपना भाई बहने जो खिलाड़ी पधारे हैं, ये तो जब तक ये जीवात्मा नहीं बन सकता है तब तक स्पेशली स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है। जब ये स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन समझ सकता है खुद को जीवात्मा समझकर परमात्मा का याद में स्मृति में उपस्थित होकर जो करेंगे वही सच्ची खिलाड़ी, अच्छी खिलाड़ी, दुनिया में बेस्ट खिलाड़ी, सो गॉडली मेडल भी उसको मिल जाएंगे गोल्डन मेडल के साथ साथ, मैं समझता हूं। एथिक्स के बारे में अपना मंच पर विराजमान महान विभूतिगण कुछ बताया। एथिक्स जो होता है फर्स्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ मॉरल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज को मिलके सो एथिक्स होता है। इसलिए ये जब तक हमें सोशली मॉरली वैल्यूज को हम लोग आगे लाइफ में बढ़ा नहीं सकता है तब तक हम लोग ये जीवन की कला हमें नहीं समझ सकता है। इसलिए राजयोग में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ तो मौल्य शक्ति भी बढ़ जाता है। वैल्यूज कैनॉट बी टॉट बट कैन बी कॉट। इसलिए ये स्वयं परमात्मा का जो विशेष शिक्षा है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, इसमें साथ साथ हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ये तो अपना सारी जो भी देवी भाई बहने हैं ये लोगों को ये अनुभवी भी है। ये तो अपना भाई जगबीर जी ने तो नौकरी छोड़कर सारी कमाने का पैसा कमाने का दुनिया छोड़कर क्यों इधर पधारा, विशेषता क्या है? तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज को समझ लिया, भगवान का ये नॉलेज को समझ लिया, भगवान ईश्वर में ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन करके इसी जीवन को हम लोगों को बढ़ा रहा है, तो मानव से देव मानव बना रहा है, इसी नॉलेज को समझकर इधर आके सेवा कर रहा है। ऐसे विक्रम सिंह जी भी तो अपना भाषण में बताया ओम शांति ब्रह्मा बाबा शिव बाबा माना, इसको भी ये लिंक जरूर है। मैं समझता हूं अपना बलबीर जी तो बॉडी बिल्डर है, तो अपना विक्रम जी बॉक्सर है, तो अपना जगबीर जी भी बॉक्सर है। सो बॉडी बिल्डिंग बॉक्सर के साथ साथ सोल के बारे में थोड़ा तो जागृता होने से हमारे स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स फिर भी जागृता हो जाएंगे। मनोबल एकाग्रता मन की संतुष्टता सहनता जो भी वैल्यूज है ये सारी ये राज्यों की एक अंग है। ये सीखते सीखते सभी वैल्यूज ऑटोमेटिकली जीवन में आ जाएंगे। मैं समझता हूं तो अपना महर्षि योग के लिए एक स्लोगन दिया है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग मना जो चंचल वृत्ति होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, इसे पतंजलि महर्षि ने हम लोगों को गाइड किया है। तो ये तो भारत में आदि ये महर्षि है आप जानते हैं तो योग की सिखाने के लिए, परंतु योग के साथ साथ तो योगासन भी सिखाया है। इन अदर वर्ड्स ही इज ऑल्सो स्पोर्ट्समैन समझेंगे, क्योंकि बॉडी को भी वो ट्रेनिंग कर रहा है साथ साथ माइंड को भी ट्रेनिंग किया है। सो योग कर्मसु कौशलम गीता बोल रहा है, जीवन में जो भी कार्य क्षेत्र में आप हो सबको कौशल रूप से अपना जीवन को बढ़ाओ। योग कौशलम सर्व क्षेत्रों में। सो ऐसे योग स्वदर्शनाय ना तो प्रदर्शनाय, ये आध्यात्मिक योग होता है सहज राज योग होता है, जो योग है ये तो प्रदर्शन के लिए नहीं है, स्वयं इंटरनल डेवलपमेंट के लिए होता है। इसलिए ऐसे योग को प्राप्त करने के लिए हमें आप सभी भाई बहनों को फिर मैं विनंती करता हूं, अपना सिटी में अपना टाउन में अपना क्षेत्र में ईश्वरी विश्व शाखा है आप जरूर इसका लाभ लेना ही है। मना एव मनुष्याणाम बंधयो जीवन मुक्ति ही, हर एक क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने के लिए मन की विचार होता है। मन की स्थिति डाउन हो जाएंगे वो पीछे हटेंगे, मन की स्थिति वृद्धि हो जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, उसको लाइफ भी जीवन मुक्ति समान हो सकता है। इसलिए हमें बारंबार ईश्वरीय स्मृति में विनंती करता हूं आप सभी जय खिलाड़ी बी राजयोगी। सभी राजयोगी जय राजयोगी भी खिलाड़ी ओम शांति।
ऐसी महान विभूति विद्वान जिन्होंने अनेक पुस्तकें अपनी कलमबद्ध की हैं, विशेष भाई साहब दिखने में बड़े सहज हैं, लेकिन मैं आपको दिल का अनुभव बताऊं कि जब इनके दर्शन हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा भाग्य उदय हो गया है। आप सबने ऐसी महान विभूति को सुना तो एक बार भाई साहब आपका बहुत बहुत दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। और अब हमारे सामने एक महान विभूति भ्राता ब्रह्मा कुमार मेहरचंद भाई जो कि करनाल से हैं, पंजाब जोनल के कोऑर्डिनेटर हैं। आप पिछले 54 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन दे रहे हैं। आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। आपने सैकड़ों भाई बहनों को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है और अनेक सेवा केंद्रों का कुशल संचालन कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स विंग के लाइफ मेंबर हैं। आज हमें अपना वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद प्रस्ताव हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेहरचंद भाई विशेष अपनी शायरी में आपके सामने धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करता हूं।
ओम शांति। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की, जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। मंच पर उपस्थित आज के हमारे मेहमान और सभा में उपस्थित स्पोर्ट्समैन तथा प्यारे भाई और बहनों, सफलता जिस ताले में बंद है वो दो चाबियों से खुलता है। एक है कठिन परिश्रम, दूसरा है दृढ़ आत्मविश्वास। यदि आपके पास ये दो चाबियां हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि बिना इन चाबियों के ताला खोल लिया गया तो वो उपलब्धियां टिक नहीं पाएंगी। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनमें ये दो गुण का समावेश रहा है। गांधी जी ने जिन लोगों के राज्य में सूर्य नहीं छुपता था, अपने कठोर परिश्रम से और आत्मविश्वास से इस भारत को उनसे आजाद कराया था। इब्राहिम लिंकन ने ये ओथ ली थी कि मैं अपने जीवन में दासों को मालिकों से मुक्त करा के रहूंगा। कोलंबस ने जब अमेरिका ढूंढा तो उसका कितना आत्मविश्वास था। वास्को डी गामा ने भारत ढूंढा, पूर्ण आत्मविश्वास था। नेपोलियन ने जब आल्पस पर्वत क्रॉस करके लड़ाई लड़नी थी तो उसके सैनिकों ने जवाब दे दिया था कि हम बहुत थक चुके हैं लड़ाइयां करके, पर आगे इतना बड़ा पर्वत है, हम कैसे लड़ सकेंगे। नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है, आल्पस हमारे सामने नहीं रहेगा, और उन्होंने आल्पस को क्रॉस करके विजय प्राप्त की थी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सफलता का यह मूल मंत्र है, जिसने जीवन में ये दो गुणों का समावेश कर लिया वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को हासिल करता है। हमारे स्पोर्ट्समैन अधिकारी भी हैं और बहुत उपलब्धियां प्राप्त हुए मंच पर भी हैं, अवश्य ही उनके जीवन में ये गुण दो अवश्य होंगे, तभी वो यहां तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन महान विभूतियों के दर्शन कर लेते हैं। अभी हमारे कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर बसवराज जी ने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन नहीं है, परंतु अपने शब्दों से स्पोर्ट्समैन के प्रति अपनी शुभ भावनाएं अवश्य देते हैं कि स्पोर्ट्समैन भारत का बढ़ता चला जाए। उनके लिए मैं दो लाइनें लिखी हैं उनकी खिदमत में। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, बिल्कुल सरल नजर आते हैं। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुनने सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते हैं कभी हमने सुना था, फरिश्ते हैं कभी हमने सुना था, बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का एक नूर दिखता है, हमें तो आप में भगवान का एक नूर दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बसराज जी का। हमारी दैवी बहन जो इस स्पोर्ट्स विंग की वाइस चेयर पर्सन है, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में जो बातें दी हैं वो जीवन में अनुभव करने लायक हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यदि जीवन में आ जाती है तो मनुष्य का जीवन निखर जाता है, मनुष्य जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, परंतु आध्यात्मिकता जिन लोगों के साथ रहती है वो उन कठिनाइयों को कठिनाई अनुभव न करके अपने जीवन में सफलता का मंत्र प्राप्त करते हैं। दीदी जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रेरणाएं हम अपनी दी हैं, मैं उनके लिए दो लाइनें लिखी हैं उनकी खिदमत में। हंसते रहे आप हजारों के बीच में, हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पीएचडी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, कितनी उपलब्धियां हैं उनकी, और सेना में भी ब्रिगेडियर हैं, और कितना अच्छा अनुभव हमसे शेयर किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं नाम तो सुना था परंतु मैंने देखे कल ही हैं कि अपने डॉक्टर अपने जगवीर जी के बड़े छोटे ब्रदर हैं, पहली बार ही, वैसे मैंने बातचीत तो नहीं की परंतु मिला जरूर हूं। उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। आप आए तो खुशियां दुगनी हो गई, आप आए तो खुशियां दोगुनी हो गई, लग गए चांद, लग गए चार चांद, महफल संवर गई, अब साथ यूं ही हमारा आपका बना रहे, अब साथ यूं ही आपका हमारा बना रहे, आपके आगमन से खूबसूरती कार्यक्रम की निखर गई, आपके आगमन से खूबसूरती कार्यक्रम की निखर गई। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब का। हमारे बीच में सरदार बलबीर सिंह जी जो कोच हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग के, यमुनानगर से हमारे हरियाणा से पधारे हैं, मैं करनाल का रहने वाला हूं, आप हमारे गुवांडी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं और आपने जो अनुभव सुनाया है, क्योंकि आप को इस यहां का जो वातावरण है आपके मन को छू गया है। जब कोई बात मन को छू जाती है तभी मनुष्य में बदलाव उत्पन्न होता है। जब तक मन को बात नहीं छूती, भले यहां कोई 10 बार भी आ गया हो, परंतु बदलाव उत्पन्न नहीं होगा। स्वामी रामतीर्थ ने यह बात कही थी जब तक मन की आंतरिक बिंदु को बाध नहीं छू जाती तब तक बदलाव उत्पन्न होते नहीं है। हजारों लोग सत्संग करते हैं परंतु बदलाव किसी एक में आता है। आपने जो अपना अनुभव शेयर किया उससे लगा कि आपके मन को यहां के वातावरण ने छुआ है और आप अवश्य ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, यहां की शिक्षाओं को अपने साथ लेकर जाएंगे जिससे आपका जीवन आगे भी पता चलेगा कि माउंट आबू से होकर आए हैं, जीवन बदल चुका है। यहां आपका नहीं अनेकों का जीवन बदला है। ये ऐसा कैंपस है जो कि परमात्मा ने ये जो बगीचा लगाया है उसकी नजरों से यहां की हर चीज प्रभावित है। इसलिए यदि यहां पर भी हम प्रभावित नहीं होते तो विश्व के किसी कोने में आप प्रभावित नहीं हो सकते हैं। मेरे साथ एक बार डॉक्टर हमारे आए थे, करनाल से एमडी डॉक्टर थे, उसने कहा था कि वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पर भी ये वातावरण आज नहीं है। मैं आपके लिए दो लाइनें लिखी हैं। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आत्मा भी आएगा जमीन पर, ये आत्मा भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बलबीर सिंह जी। सरदार बलवान सिंह जी, श्री बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य अवार्डी, आप दिल्ली से पधारे हैं, आपने सबको हंसाया है। आपको हंसने की जो कला है ये बहुत अच्छी है, कुदरत ने आपको दी है, क्योंकि जो एक बार हंस लेता है उसकी सारी बीमारियां निकल जाती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हंसने से बीमारियां कटती हैं। और जो आदमी 24 घंटे मुंह सजाए घूमते हैं वो बीमारी दिखाई पड़ते हैं। मैंने एक भाई से पूछा, भाई क्या बात हो गई, कहता है जी शक्ल ही ऐसी है। तो मैंने भाई साहब के लिए भी दो लाइनें दे रहा हूं। उस नजर को कभी मत देखो, उस नजर को कभी मत देखो जो तुम्हें देखने से नजर अंदाज करती है। दुनिया की महफिल में केवल उस नजर को देखो, दुनिया की महफिल में केवल उस नजर को देखो जो तुम्हारी एक नजर का इंतजार करती है, जो तुम्हारी एक नजर का इंतजार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेज अपर्णा कमली जी जो इंटरनेशनल कोच क्रिकेट कोच हैं, मुंबई से पधारे हैं, बहन जी ने बहुत अच्छे अपने अनुभव शेयर किए हैं। आपको यहां का ज्ञान बहुत अच्छा लगा है और आपने लगता है कि मधु को चाट लिया है। आप संस्था के संपर्क में बहन जी के द्वारा है, जयश्री बहन के द्वारा, और पहली बार ही लगता है आप यहां आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि आप जैसी शख्सियत यदि इस ज्ञान को समझ लेगी तो आप हजारों लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं। मैं आपके लिए दो लाइनें दे रहा हूं। चांद ने चांदनी बिखेरी है, चांद ने चांदनी बिखेरी है, तारों ने आसमां को सजाया है, लेकर तोहफा अमन और प्यार का, लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। इस कार्यक्रम के
जिन्होंने आपको अभी सारा प्लान दिया है, हमारे दाई भ्राता डॉक्टर जगवीर सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने पूरे जान लगाई और हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और देश में जगह जगह जाकर भी अपने कार्यक्रम रखते हैं, हमारे स्पोर्ट्स विंग के आबू कोऑर्डिनेटर हैं, मैं देखता हूं वो दिन रात लगे रहते हैं अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। करना भी चाहिए, जब से नौकरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, फिर बाकी तो कुछ करना है, यदि फिर भी ना करेंगे तो किस लिए छोड़ा। इसीलिए वो अपने एम को लेकर 24 घंटे अग्रसर रहते हैं। उनके लिए दो लाइनें दे रहा हूं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद राता जगवीर जी का। मेरी बहन तारा जी ने मेडिटेशन के बारे आपको बताया। बहन जी बहुत अनुभवी हैं और बहुत सेवाधारी हैं, तो मैं उनके लिए दो लाइनें दे रहा हूं। मजा तो हमने इंतजार में देखा है, आपके कार्यक्रम के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। मजा तो हमने इंतजार में देखा है, चाहत का असर प्यार में देखा है। लोग ढूंढते हैं जिसे मंदिर मस्जिद में, लोग ढूंढते हैं जिसे मंदिर मस्जिद में, उस खुदा को मैंने आप में देखा है, उस खुदा को मैंने आप में देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे दैवी भ्राता ज्योति कुमार जी, जो के स्पोर्ट्स विंग के लाइव मेंबर हैं, बल्लभगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत ही अनुभवी वक्ता हैं और जब कहो सेवा के लिए तैयार हैं। उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। रिश्तों की जोड़ी कमजोर होती है, आंखों की बातें खामोश होती हैं, कोई पूछे जब महान हस्ती का मतलब, कोई पूछे जब महान हस्ती का मतलब, हमारी उंगली बस आपकी ओर होती है, हमारी उंगली बस आपकी ओर होती है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आप भाई बहनों का कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बात को सुनने के लिए आप ही बैठे हैं, बाकी तो उठ के चले गए हैं। जो बैठे हैं उनके लिए भी अवश्य है कि दो लाइनें तो दी जाएं। मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूं लाइनों के द्वारा। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, मिलती है कुछ दिखाने के लिए। ये जीवन को दिखाने के लिए मिला है, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला हमें। रोके अगर आसमां आपके रास्ते को, रोके अगर आसमां आपके रास्ते को, तो तैयार हो जाए आसमान को झुकाने के लिए, तैयार हो जाओ आसमान को झुकाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मेहरचंद भाई जी का। एक बार ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अब मुझे आपके धन्यवाद में शायरी तो याद नहीं आ रही, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम जियो हजारों साल, ये आरजू हमारी है, आप यूं ही सेवा करते रहें, ये जुस्तजू हमारी है, ये जुस्तजू हमारी है। थैंक यू वेरी मच। विशेष संग्रह करके आपने शायरी के माध्यम से आज वोट ऑफ थैंक्स हम सब के बीच रखा। अभी हम अपने अतिथि गणों का ईश्वरीय सौगात और गिफ्ट दे करके अभिनंदन करेंगे। हमारे आदरणीय बसुराज भाई जी, आदरणीय शशि दीदी जी, हमारे आए हुए अतिथि गणों को ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे। एक अनाउंसमेंट है कि आपको अभी साइड सीन के लिए पीस पार्क जाना है। सेकेंडली, स्पोर्ट्स विंग प्रोग्राम की कोई भी आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप हारमोनी हॉल के नीचे गॉडली गिफ्ट शॉप से ले सकते हैं और हमारा फीडबैक सेशन नीचे के मेडिटेशन हॉल में होगा। बसुराज जी हमारे क्रिकेट कोच, नेशनल कोच जी को ईश्वरीय सौगात और शॉल दे रहे हैं। रिस्पेक्टेड बलबीर सिंह जी यमुनानगर से, आपको ये ईश्वरीय घर से सम्मान आप स्वीकार करें। बसुराज जी उन्हें ईश्वरीय प्रसाद से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपको भी ईश्वरीय सौगात स्वीकार हो। भ्राता जी ईश्वरीय प्रसाद दे करके आपका अभिनंदन। और हमारे बलवान सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर हम सबके सामने वक्तव्य रखा, उन्हें शॉल पहनाकर आदरणीय शशि दीदी जी सम्मानित कर रहे हैं और हमारे आदरणीय बसुराज राजऋषि जी उन्हें ईश्वरीय प्रसाद देकर, और ये आप सबको अपनी मुद्रा का, अपने जीवन का, अपने हास्य जीवन का एक प्रस्तुतिकरण हम सबको दिखा रहे हैं।
जो ये हम आपस में मिले हैं, एक मेरे को भी एक शेर याद आ गया दोस्ती के ऊपर, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई उम्र का तकाजा नहीं होता। एक 10 साल के बच्चे की और 80 साल के बुजुर्ग की भी दोस्ती हो सकती है, एक लेडीज की एक जेंट्स से भी दोस्ती हो सकती है। दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर है, क्योंकि जो हम बात अपनी अपने घर वालों से किसी से नहीं कर सकते वो हम अपने दोस्त से कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्ती पे दो लाइनें हैं। दोस्त शब्द नहीं है कि जो मिट जाए, उम्र नहीं है जो घट जाए, ये सफर नहीं है जो कट जाए, ये तो वो एहसास है जिसके लिए जिया जाए तो जिंदगी भी कम पड़ जाए। थैंक यू, ओम शांति।
बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम पीस पार्क के साइड सीन के लिए जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम के समापन से पहले उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव की याद में हम सब बैठेंगे।